अवैध नारविंद भक्ति वेदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नवाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री रूप गोस्वामी तिरुभावतिथि महामहोत्सव की जय। श्री गौरीदास पंडित तिरुभावतिथि महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमावती और गौरी सुदर्शन ब्रजगोरी हरे कृष्ण और गौरी सुदर्शन ब्रजगोरी हरे कृष्ण और गौरी श्री गुरु है। ओम अज्ञान तिम्रंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले श्रील गौरीदास पंडित के बारे में हम पढ़े हैं। इस समाधि पुस्तक से हम पढ़ रहे हैं और के बारे में थोड़ा संक्षिप्त वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। तो गौरीदास पंडित के बारे में बता रहे हैं। गौरीदास पंडित द एम्बलम ऑफ द मोस्ट एलिवेटेड डिवोशनल सर्विस एंड लव ऑफ गॉड एंड एट द ग्रेटेस्ट पोटेंसी टू रिसीव एंड डिलीवर सच लव मेकिंग लॉर्ड चैतन्य लॉर्ड नित्यानंद लॉर्ड ऑफ हिज लाइफ। गौरीदास पंडित सैक्रीफाइज एवरीथिंग फॉर द सर्विस ऑफ लॉर्ड नित्यानंद। यानी कि गौरीदास पंडित चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के ये परिकर हैं और उनको पूरी शक्ति प्राप्त हुई है। ये कृष्ण प्रेम भी ये प्राप्त कर सकते हैं और कृष्ण प्रेम का ये वितरण भी कर सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अपना जीवन प्राण बनाते हुए गौरीदास पंडित ने सर्वस्व अपना सर्वस्व त्याग दिया नित्यानंद प्रभु के चरणों में, ऐसा चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। बिफोर टेकिंग संन्यास लॉर्ड चैतन्य लॉर्ड नित्यानंद विजिटेड गौरीदास पंडित इन अंबिका कावरा फेयरिंग देयर इम्पेंडिंग सेपरेशन गौरीदास क्राइड एंड बेग द लॉर्ड टू स्टे लॉन्गर। महाप्रभु मेड लाइक टीम डिटीज ऑफ गौरविता इज लविंग सर्वेंट गौरीदास माई मूर्ति फॉर्म इज एज गुड एज आई एम सेड लॉर्ड गोरंगा वी फॉरएवर रिमेन इन योर होम एक्सेप्ट योर सर्विस। तो संन्यास लेने से पहले चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु अंबिका कालना गए थे और गौरीदास को बड़ा ही दुख हो रहा था कि चैतन्य महाप्रभु कुछ समय के बाद चले जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको विग्रह का उनका ही विग्रह दिया गौरताई का विग्रह दिया अपने प्रेमी सेवक को और ये कहा कि ये मेरी मूर्ति है मुझसे अभिन्न है और हमेशा हम यहाँ आपकी सेवा स्वीकार करेंगे नित्य रूप से। गौरदास पंडित वर्षिप गौरताई मेनी इंटीमेट वे टॉकिंग स्वीटली टू देम कुकिंग अ वैरायटी ऑफ टेस्टी फूड डिस्कसिंग शास्त्र विद देम attending to their every need throughout the day. Even when old and feeble Gauridas ceaselessly served his worshipful Lord Shri Shri Gaurdaya. तो नाना प्रकार के सुस्वादिष्ट व्यंजन बनाते थे गौरदाय को भोग लगाते थे और उनके साथ ही बैठकर शास्त्रों की भी चर्चा करते थे। और जब ये वृद्ध भी हो गए थे गौरदास फिर भी श्री श्री गौरदाय की सेवा पूजा में लगे हुए थे। Although poor, he desired to decorate Gauridas with costly, beautiful ornaments, knowing his mind Gauridas lavishly adorned themselves. Beholding their exquisite beauty, Gauridas became astonished. Where did they get these ornaments? एक दिन की इच्छा हुई कि गौरीदास को सुंदर आभूषण बनाए उसे सुसज्जित करें और चूंकि ये गरीब थे तो गौर ध्यान समझ गए कि इनके पास धन नहीं है। तो जब उन्होंने दर्शन किया तो देखा कि वो सारे के सारे आभूषण उनके विग्रह में है। और इन थॉट श्री श्री गौर साहब ऑफन इन एक्ट द ट्रांसिट पास इन द होम ऑफ द प्योर डिवोटी श्री गौरीदास पंडित। वन टाइम चैतन्य दास गौरीदास फॉरवर्ड डिसाइबल ऑर्गेनाइज द ह्यूज संकीर्तन फेस्टिवल ऑन द बैंक ऑफ द गैंजेस। एक बार उनके शिष्य चैतन्य दास ने गंगा जी के तट पर एक भव्य संकीर्तन का आयोजन किया था। एंड रैप्चर्ड बाय द कीर्तन गौरीदास लेडीज जंप्ड ऑफ द ऑल्टर एंड जॉइंड द डिवोटी इन चैंटिंग एंड डांसिंग तो गौरदास के जो विग्रह गौरता है वो ऑल्टर छोड़कर बेदी छोड़ गए, भक्तों के साथ चले गए संकीर्तन में भाग लेने के लिए। गौरदास ग्रैब्ड अ स्टिक एंड रैन टू कैच गौरदाई। गौरदास पीछे पीछे भागे छड़ी लेकर गौरदाई को पकड़ने के लिए। सेइंग इज एंग्री मूड गौरदास सेइंग इज एंग्री मूड गौरदाई वैनिश्ड। एट दैट मोमेंट गौरदास वॉच एन अमेजमेंट टू सी गौरदाई एंटर द हार्ट ऑफ चैतन्य दास। और गौरीदास से भयभीत होकर गौरदाय वहां से भाग खड़े हुए और ओझल हो गए और चैतन्य दास उनके ही शिष्य के हृदय में प्रवेश कर गए। गौरदास एम्ब्रेस बिलोवर्ड डिसाइबल बेड देम विद टीयर्स एंड सेड यू आर मोस्ट फॉर्चुनेट फॉर टुडे योर नेम विल बी हृदय चैतन्य। गौरदास पंडित बहुत प्रसन्न हुए अपने शिष्य से और उनका आलिंगन किया और उन्हें कहा कि आज से तुम्हारा नाम हृदय चैतन्य है क्योंकि तुम्हारे हृदय में सदा सदैव श्री चैतन्य महाप्रभु वास करें। Since when the Gaurakai Darshan at Gaurakai Pandit's temple is offered many brief intervals like Baki Bihari ki in Vrindavan, Baki Bihari Mandir ki tarah hi, yahan par Ambika Kalna mein, is mandir mein Vigraha ka darshan band hota aur khulta hai, kuch hi samay mein. To keep Gaurakai from jumping off the altar, Pujari to open and quickly close the curtain throughout the darshan time, Pujari ko bhai rehta hai ki phir se na chale jaye, wo altar chhod ke. इसलिए बार बार वो दर्शन बंद करते रहते हैं और खोलते रहते हैं। और वीर समीर को जो वृंदावन परिक्रमा मार्ग में आपने देखा होगा, गौरदास पंडित ने नित्य लीला में प्रवेश किया, गोचार लीला में प्रवेश किया। ब्रज लीला में गौरदास पंडित सुबल सखा है द्वादश गोपालों में से एक, और उनकी समाधि श्याम राय मंदिर में है वीर समीर श्रीधाम वृंदावन। श्रील गौरदास पंडित तुर्भाव तिथि महामोत्सव के जय। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन दो महानाचार्यों का तिरुभाव दिवस है। जैसे कि हम जानते हैं कि वैष्णवों का आविर्भाव तिरुभाव दोनों में कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी तिरुभाव दिवस का अधिक महत्व होता है गौड़िया वैष्णव के लिए, क्योंकि इस दिन आज के दिन श्री रूप गोस्वामी ने अपना जो आने का उद्देश्य है वो पूरा किया और वो पुनः नित्य लीला में प्रवेश किया। जिस उद्देश्य से श्री रूप गोस्वामी पास जी आए थे इस पृथ्वी में, उस उद्देश्य को उन्होंने पूरा किया और उस उद्देश्य को पूरा करके वापस गोलोक धाम में प्रवेश हो गए, नित्य लीला में प्रवेश हो गए। नर्तनदास ठाकुर लिखते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। शिल रूप गोस्वामी पाद जिन्होंने इस पृथ्वी में इस भूतल में श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोविष को स्थापित किया है, वो शिल रूप गोस्वामी कब मुझे नित्य शाश्वत स्थान देंगे अपने चरणों में, अपने चरण कमलों में। श्री रूप कदा मह्यम स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। तो श्रील रूप गोस्वामी के बारे में तो बहुत ही विस्तार से चर्चा दी गई है श्री चैतन्य चरितामृत में, भक्ति रत्नाकर में और ऐसे ही कुछ ग्रंथों में। श्रील रूप गोस्वामी हमारे संप्रदाय के सबसे प्रमुख आचार्य हैं और गोस्वामियों में भी सबसे प्रमुख है, प्रिंसिपल गोस्वामी हैं। हालांकि सनातन गोस्वामी उनसे बड़े माने जाते हैं, लेकिन श्रील रूप गोस्वामी का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि इसी कारण से हम सबको गुरु पादुका कहा जाता है। जय द्वार का देश जय जगराम का देश शशि गौर। हालांकि शिल रूप गोस्वामी की शिक्षा में और शिल सनातन गोस्वामी की शिक्षा में कोई भेद नहीं है, इन छह गोस्वामी की शिक्षाओं में आपस में कोई भेद नहीं है। तो शिल रूप गोस्वामी के बारे में पहले एक आपको समरी दे देते हैं, जिससे हम लोगों को याद रहेगा कि हमने क्या सुना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटना है श्री रूप गोस्वामी के जीवन में। उनका आविर्भाव हुआ था 1489 में, 1489 एडी में श्री रूप गोस्वामी का अपीयरेंस हुआ था 1489 एडी। और उनके दीक्षा गुरु हुए श्री विद्यावाचस्पति जो कि सार्वभौमट आचार्य के भाई थे, छोटे भाई थे। और चैतन्य महाप्रभु को सबसे पहले वो मिले थे, या चैतन्य महाप्रभु से जाके मिले थे रामकेली में 1514 में। उस समय उनकी उम्र कितनी थी, 25 वर्ष के थे। और चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने प्रयाग में शिक्षा ली थी और उसके बाद वृंदावन की यात्रा की उन्होंने माघ के महीने में 1516 ईस्वी में। और नीलाचल से वृंदावन गए थे, जगन्नाथपुरी भी गए थे, तो जगन्नाथपुरी से वृंदावन गए थे 1517 में। और गोवाटीला में श्रीधाम वृंदावन में गोविंद देव जी का विग्रह प्राप्त हुआ था 1535 ईस्वी में। उस समय उनकी उम्र जो है 46 साल की थी। और भक्ति रसाम सिद्धु ग्रंथ की रचना उन्होंने की थी, संपन्न की थी रचना 1545 में। अप्रकट हुए थे श्रील रूप गोस्वामी 1554 में, 65 साल की उम्र में। और उससे एक महीने पूर्व, लगभग एक महीने पूर्व श्रील सनातन गोस्वामी का तिरुभाव हुआ था। और इस तरह उनका ये पूरा जीवन है। उनकी समाधि श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में है, आज भी आप श्रील रूप गोस्वामी का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं वहां पर। इससे पहले कि हम और आगे बताएं, श्रील प्रभुपाद जी जब श्री धाम वृंदावन में थे रूप गोस्वामी के बिल्कुल ही निकट, रूप गोस्वामी की समाधि को देख सकते थे अपने कमरे से। और प्रत्येक दिन श्रील रूप गोस्वामी के पास जाते और प्रभुपाद अगरबत्ती दिखाते। और श्रील रूप गोस्वामी ने किसी एक भक्त को कहा था कि प्रत्येक दिन सैकड़ों भक्त आपके पास आते हैं आपका दर्शन प्राप्त करने के लिए। सबको तो दर्शन प्राप्त होता नहीं है आपका, साक्षात आपकी समाधि का दर्शन करते हैं। कब वो दिन आएगा कि मुझे आपका साक्षात दर्शन प्राप्त होगा? श्रील प्रभुपाद ने इस तरह से प्रार्थना की। एक भक्त को बताया, गोविंद घोष, गोविंद घोष या गोपाल घोष का नाम था। तो श्रील प्रभुपाद ने एक दिन रात्रि को सपने में देखा श्रील रूप गोस्वामी को, श्रील रूप गोस्वामी को, श्रील सनातन गोस्वामी को, श्रील जी गोस्वामी को। ये बाद में घटना हरीश्वरी प्रभु ने भी बताया, प्रभुपाद ने स्वयं बताया था हरीश्वरी प्रभु। तो श्रील रूप गोस्वामी ने कहा श्रील प्रभुपाद जी को कि जब जब आप श्री भक्ति रसामृत सिंधु और चैतन्य चरितामृत का पाठ करेंगे मुझे आप बिल्कुल अपने नजदीक पाएंगे और ये महान कार्य आपके द्वारा ही होगा। कौन सा महान कार्य? श्री चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी है उसको सत्य आप ही करेंगे, ऐसा श्रील रूप गोस्वामी ने कहा किसको? श्रील प्रभुपाद जी। तो हरीश्वरी प्रभु को जब प्रभुपाद ने बताया एक बार ये बात, तो शायद हरीश्वरी प्रभु ने किसी और को जाके बता दिया और किसी एक भक्त ने या किसी और भक्त को बताया था, उन्होंने फिर हरीश्वरी प्रभु को बताया जाके, फिर हरीश्वरी प्रभु ने आके कन्फर्म किया कि बात सच है, प्रभुपाद आपने ऐसा कहा। प्रभुपाद ने कहा ये तो आप सब जानते हैं बात, प्रभुपाद खुश नहीं हुआ कि हम सबको बता रहे हैं बात। तो श्रील रूप गोस्वामी ने स्वयं शक्ति प्रदान की थी श्रील प्रभुपाद जी को। तभी यहां पर जब बताया जा रहा है श्री चैतन्य मनोभिषम स्थापिता ये न भूतले, भूतल में स्थापित किया श्रील रूप गोस्वामी ने। कैसे? श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से, श्रील प्रभुपाद जी ने ग्रंथों के वितरण के माध्यम से श्रील रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को पूरे संसार भर में स्थापित किया है। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध के 25वें अध्याय के 25वें श्लोक में ऐसा वर्णन मिलता है, ये श्लोक है, सताम प्रसन्ना मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा तद्दोषनाथ आश्व अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धारति भक्ति अनुक्रमश्यति। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील विश्वनाथ जी के ठाकुर ने कहा है कि भक्ति के प्रोसेस को समझाया है कि श्रद्धा से प्रारंभ होकर प्रेम तक जाती है, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया इस तरह से। फिर विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं कि इसी भक्ति प्रोसेस के द्वारा जो श्रील रूप गोस्वामी ने दिया है, इसी प्रोसेस के द्वारा पूरे संसार भर में प्रचार होगा। श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रम शक्ति का मतलब यह है कि श्रद्धा से रति, श्रद्धा से प्रेम तक की जो जितनी भी सीढ़ियां हैं उसका वर्णन श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने किया है। और श्रील विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं कि इसी प्रोसेस के माध्यम से पूरे पृथ्वी भर में प्रचार होगा। तो ये एक और भविष्यवाणी श्रील प्रभुपाद जी की, श्रील विश्वनाथ जी के ठाकुर के द्वारा श्रीमद् भागवत में। तो श्रील रूप गोस्वामी एक महान आचार्य हैं, जिनका जीवन श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को पूरा करने के लिए था। और यदि कई महान आचार्य महान आचार्य का कहना है कि श्रील रूप गोस्वामी कौन है जिन्होंने महाप्रभु की शिक्षाओं को रूप दिया, श्रील रूप गोस्वामी वो है जिन्होंने महाप्रभु की शिक्षाओं को रूप दिया, वो है श्रीपाद रूप गोस्वामी। और रूप भी बिल्कुल महाप्रभु जैसा ही था उनका, चैतन्य महाप्रभु जैसे ही दिखते थे श्रील रूप गोस्वामी, बिल्कुल चेहरा उनका मिलता जुलता। इसी तरह से जो श्री रूप मंजरी है, जो रूप गोस्वामी भरतीदा में श्री रूप मंजरी है, रूप मंजरी भी राजरानी जैसे ही दिखती है बिल्कुल यथारूप। तो मनोभीष्ट का मतलब यह है, चैतन्य मनोभीष्टम, ये चैतन्य महाप्रभु जो मनोभीष्ट है वो श्री रूप गोस्वामी कैसे जानते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के हृदय में सदैव श्री रूप गोस्वामी वास करते हैं और श्री रूप गोस्वामी के हृदय में श्री चैतन्य महाप्रभु वास करते हैं। तो स्वाभाविक है कि श्री रूप गोस्वामी महाप्रभु के मनोभीष्ट को जानेंगे। चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट क्या है ये तो अपने आप में एक बहुत विस्तार का विषय है, लेकिन इतना जरूर समझ लें कि महाप्रभु के मनोभीष्ट को, महाप्रभु जिस उद्देश्य से आए थे उस उद्देश्य को, एक्सटर्नल रीजन हो या प्राइमरी रीजन हो, प्रमुख कारण हो या गौण कारण हो, दोनों ही कारणों को पूरा करने वाले हैं। यानी कि उन कारणों का आना, जो चैतन्य महाप्रभु का आने का कारण था, प्रमुख कारण था या गौण कारण था, वो दोनों ही इच्छाओं को पूरा किया, या उस आने के जो उद्देश्य था चैतन्य महाप्रभु का, उस उद्देश्य को स्थापित किया या पूरा किया श्रील रूप गोस्वामी ने। तो एक बहुत सुंदर श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में ही, और इस श्लोक में बताया गया है, ये चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन आता है और दूसरा कवि कर्णापुर ने इसको चैतन्य चंद्रोदय नाटक में इसका वर्णन किया है, श्लोक का बहुत सुंदर वर्णन किया है। इस श्लोक के बारे में पहले हम चर्चा करेंगे, श्रील रूप गोस्वामी के बारे में ही ये बताया गया है। प्रिय स्वरूपे दैत स्वरूपे प्रेम स्वरूपे, ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में भी है और इस श्लोक में लिखा है, प्रिय स्वरूपे दैत स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजादि रूपे निजान रूपे प्रभु रेख रूपे ततान रूपे स्व विलास रूपे। बहुत सुंदर श्लोक है ये, कवि कर्णापुर के द्वारा लिखा गया है। इस श्लोक में क्या बात बताई गई, प्रिय स्वरूपे, जिसके प्रिय मित्र शील स्वरूप द्वारवर दामोदर गोस्वामी है, यानी प्रिय स्वरूप कौन है, किनके प्रिय है, शील रूप गोस्वामी के प्रिय है श्री स्वरूप दामोदर, स्वरूप दामोदर बहुत प्रिय है शील रूप गोस्वामी को। और साथ में दैत स्वरूपे, दैत स्वरूपे जो श्री चैतन्य महाप्रभु को भी अत्यंत प्रिय थे, प्रेम स्वरूपे उनके निजी प्रेम के स्वरूप को, सहज अभिरूपे जो स्वाभाविक रूप से बहुत सुंदर थे, निज अनुरूपे जो पूरी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत का अनुसरण करने वाले थे, और प्रभु महाप्रभु यानी श्री चैतन्य महाप्रभु एक रूपे, एक रूप ततारा यानी बताया रूपे, रूप गोस्वामी को स्वविलास रूपे जो भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। सर्वार इस तरह से शिल स्वरूप दामोदर के प्रिय मित्र शिल रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की हूबहू अनुकृति थे, ये हमने बताया, बिल्कुल चैतन्य महाप्रभु जैसे ही दिखते थे और वे महाप्रभु को अत्यंत प्रिय थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम की साक्षात मूर्ति होने के कारण रूप गोस्वामी स्वाभाविक रूप से अत्यंत सुंदर थे। उन्होंने महाप्रभु द्वारा स्थापित सिद्धांतों का सावधानी से पालन किया और वे भगवान कृष्ण की लीलाओं की सही व्याख्या करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति थे। चैतन्य महाप्रभु ने उन पर इसलिए अपनी कृपा दृष्टि डाली ताकि वे दिव्य साहित्य की रचना करके सेवा कर सके। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है कवि कर्णापुर के द्वारा, जिसमें श्री रूप गोस्वामी के उनके तत्व के बारे में बताया गया है, उनके रूप के बारे में बताया गया है और इस उद्देश्य से श्रील रूप गोस्वामी आए हैं और क्या कार्य उनको श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, ये सब इस श्लोक का वर्णन किया गया है। श्लोक में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया। अब हम लोग इतिहास की तरफ चलते हैं, चैतन्य चरितामृत के अनुसार जो वर्णन मिलता है उसके अनुसार हम लोग आगे बताना शुरू करेंगे। 1514 में श्री चैतन्य महाप्रभु पुरी से वृंदावन की ओर निकले थे, नीलाचल से वृंदावन की ओर निकले थे और हजारों की संख्या में भक्त उनके पीछे पीछे हो लिए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु जहां भी जाते थे तो पीछे हजारों की तादाद में पीछे पीछे चलते थे और काफी दूर तक जाते थे उनके साथ। और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु को मना करना होता था कि बस अब यहां से मैं अकेले जाऊंगा। जैसे ब्रजवासी भी जब कृष्ण जो है वृंदावन छोड़ के जा रहे थे, अक्रूरी लेके जा रहे थे कृष्ण बलराम को, तो सारे ब्रजवासी पीछे पीछे जा रहे थे, जितनी दूर जा सके जा रहे थे सब। तो इसी तरह चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे सब भक्त लोग जा रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु निकल पड़े हैं। अब उनको तो जाना था झारखंड के जंगल से निकलकर वृंदावन, लेकिन उनका विचार बदल गया और वो गौड़ देश की तरफ हो गए और गौड़ देश के में पहुंचे रामकेली में। रामकेली वो स्थान है जहाँ पे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी रहा करते थे जब वो नवाब हुसैन शाह की सेवा में थे। उस समय उनका नाम रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी नहीं था, उनके जो बचपन का नाम था वो था अमरदेव और संतोष देव। सनातन गोस्वामी का नाम था अमरदेव और श्री रूप गोस्वामी का नाम था संतोष देव। ये कर्नाटक ब्राह्मण सारस्वत ब्राह्मण परिवार से थे, दक्षिण भारत से। अधिकांश जो गोस्वामी है दक्षिण भारत से हुए, यहाँ पर बंगाल से हुए। रघुनाथ दास गोस्वामी बंगाल से हुए, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बंगाल से हुए, गोपाल भट्ट गोस्वामी दक्षिण भारत से हुए, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी जैसे ही परिवार के हैं, ये दक्षिण भारत से हुए। तो इस प्रकार अमरदेव और संतोष देव नवाब हुसैन शाह के पास कार्यरत थे और बहुत ऊंचे पद में थे। उस समय अमरदेव को उपाधि प्राप्त हुई थी, नवाब हुसैन शाह उपाधियां दिया करते थे और उनको उपाधि मिली थी सादर मल्लिक यानी कि प्रधानमंत्री, गौड़ देश के प्रधानमंत्री थे सनातन गोस्वामी। और रूप गोस्वामी को बनाया गया था दबीर खास यानी कि वित्त मंत्री कह लीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर या प्राइवेट सेक्रेटरी भी थे वो। तो इतने ऊंचे पोस्ट में थे, प्रैक्टिकली उस देश का सारा व्यवस्था देखने वाले ये दो ही थे। और बहुत अधिक बुद्धिमान होने के कारण को ये कार्य दिया गया था, क्योंकि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को ये भय था कि अगर हम इस पद को नहीं स्वीकार करेंगे तो नवाब क्या करेगा, ब्राह्मणों को वैष्णव खत्म करेगा, मंदिर तोड़ डालेगा। इसलिए इस भय से रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने पद स्वीकार किया। तो उस समय लेकिन उनका नाम था अमरदेव और संतोष देव और नवाब ने उनको बाधी दी थी दबीर खास और साकर मलिक। तो ये दोनों रामकेली में रहा करते थे और संस्कृत भाषा में, फारसी भाषा में, अरबी भाषा में, इन सभी भाषाओं में, बंगाली में, कई भाषाओं में पारंगत थे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। और तो चैतन्य महाप्रभु जब वहां पहुंचे थे तो बहुत समय से उनके इंतजार कर रहे थे कि कब महाप्रभु आएंगे, कब महाप्रभु हमें इस जंजाल से छुटकारा दिलाएंगे, कब हमारा उद्धार होगा, कब यहां से निकलेंगे हम, कहां फंस गए हम लोग। इतना बड़ा पद मिला है उनको, इतना धन था उनके पास, लेकिन फिर भी सबको त्यागना चाह रहे। क्यों? क्योंकि महाप्रभु से इतना प्रेम था उनको। श्री रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति रसात सिंधु में शुद्ध भक्ति के 6 लक्षणों का वर्णन करते हुए, जो प्रेम भक्ति के 2 लक्षण बताया उन्होंने श्री रूप गोस्वामी ने। क्या बताया? सांदरानंद विशेष आत्मा और श्री कृष्ण आकर्षण। सांदरानंद विशेष आत्मा का मतलब होता है कोई स्थिति में जब होता है तो उसको इंद्र तृप्ति का रंच मात्र भी आभास नहीं होता। जैसे कि अगर लोहे की शिला है और उसमें अगर सुई डालना चाहो, सुई निकालना चाहो, संभव है? बिल्कुल संभव नहीं। इसी तरह से जो महाप्रभु के चरणों में या कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्त कर चुका है या जिसका प्रेम है, प्रेम में सेवा में लगा हुआ है,
वो कैसे इंद्रशक्ति का आभास करेगा, वो तो आभास कर ही नहीं सकता है। और इस तरह की व्यवस्था हो जब इंद्रशक्ति के लिए बहुत कुछ है, इतना धन है, इतना ऊंचा पद है, इतना सारा बल है, इतनी शक्तियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई रुचि नहीं है इसमें। इंद्रशक्ति का आभास नहीं होने का मतलब यह है कि उसमें रुचि नहीं। उनकी रुचि तो कहाँ है, महाप्रभु के चरणों में है। तो चेतने महाप्रभु ने उनको सांत्वना दी, चेतने महाप्रभु को कई बार उन्होंने चिट्ठियां भी लिखी थी, और चेतने महाप्रभु को बार बार समझाते, और चेतने महाप्रभु ने एक बार उनको जवाब दिया था, चिट्ठी में उत्तर दिया था। उन्होंने कहा कि देखिए आप चिंता मत करें, कृष्ण जल्द ही आपको सांसारिक कर्तव्यों से मुक्त करें। और उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस तरह से एक स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष का चिंतन करती है घर के सारे कार्यों को करते हुए, इसी तरह से आप राज्य का कार्यभार करते हुए, नवाब के पास रहते हुए, आप कृष्ण का भीतर से चिंतन करो। ऐसा चैतन्य महापुरुष को उदाहरण दिया, और समय आने पर फिर आप वहां से निकल पाओगे। तो चैतन्य महाप्रभु जब वहां पहुंचे थे रामकेली में, तो उनसे मिलने आए श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, और महाप्रभु के चरणों में गिर गए अपने को दीनहीन बताते हुए, और महाप्रभु से पुनः अनुग्रह कर रहे थे कि उनको यहां से जाने की अनुमति दे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप जल्द ही कृष्ण की सेवा में लगोगे, आप चिंता मत करो, और आज से आप दोनों का नाम है श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी। तो अमरदेव का नाम पड़ा श्री सनातन गोस्वामी, और संतोष देव का नाम पड़ा श्री रूप गोस्वामी। तो इस तरह से स्वयं चैतन्य महापुरुष ने उनको नाम दिया श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी। तो इसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु उनसे काफी लंबा उनसे वार्तालाप हुई, और की बड़ी इच्छा हुई थी कि वो वापस जाएं चैतन्य महाप्रभु के साथ, लेकिन समय अभी तक आया नहीं था। और चैतन्य महाप्रभु उनसे बहुत सारे कार्य भी करा रहे थे श्रीराम वृंदावन में। तो रूप और सनातन गोस्वामी के बारे में श्री रश्मि गोस्वामी रघु वैष्णव तोषणी में उनकी वंशावली का वर्णन करते हैं, फैमिली लीनियज का वर्णन करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि एक राजा हुए थे कर्नाटक के, जिनका नाम था सर्वज्ञ जगतगुरु, सर्वज्ञ जगतगुरु, और उनके पुत्र थे राजा अनिरुद्ध। राजा अनिरुद्ध के दो पुत्र हुए, हरिहर और रूपेश्वर। लेकिन हरिहर ने क्या किया, राज्य को हड़प लिया और रूपेश्वर को वहां से निकाल दिया। तो रूपेश्वर वहां से चल पड़े और अपने ही मित्र शिखर में जाकर, शिखरेश्वर से जाके मिले और उनके साथ रहने लगे। और उसके बाद फिर उनके पुत्र थे पद्मनाभ, जो कि यजुर्वेद में और कई वैदिक शास्त्रों में दक्ष थे। तो पद्मनाभ भी वहां पे गंगा जी के तट पर रह रहे थे। और उसके बाद फिर उन्होंने फैसला किया कि वहां से वो बाकला चंद्रद्वीप जाएंगे, तो बाकला चंद्रद्वीप चले गए वहां। और वहां पे राजा धनुर्वर्धन के निमंत्रण पे वो पहुंचे थे, और उनकी कई संतानें हुई थी, बताते हैं उनकी 18 कन्याएं हुई और कई उनके पुत्र भी थे, जिसमें पुरुषोत्तम, जगन्नाथ, नारायण, मुरारी, मुकुंद के पुत्र हुए कुमारदेव, और कुमारदेव की कई संतानें हुई थी। और संतानों में से जो प्रमुख थे वो थे रूप गोस्वामी यानी अमरदेव, संतोष देव और अनुपम। ये तीन मुख्य उनके पुत्र हुए हैं, किसके, कुमार देव। तो इस तरह से इनकी वंशावली का वर्णन किया गया है। और 1489 एडी में, 1489 में श्री रूप गोस्वामी का आविर्भाव हुआ। और सनातन गोस्वामी के जो पिता थे मुकुंद देव, उन्होंने ये फैसला किया कि अब इन दोनों को हमें मुझे शिक्षा देनी चाहिए, इनको पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को भेजा, क्योंकि मुकुंद देव ही अब उनको उनका देखभाल कर रहे थे, क्योंकि उनके जो पिता थे कुमार देव उनकी जल्द ही मृत्यु हो गई थी। मुकुंद देव वास्तव में नवाब हुसैन शाह के राज्य में एक बड़े ऊंचे पद में थे, और मुकुंद देव ने मुकुंद देव रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को राम के लिए लेके आए, तो इस तरह से वो राम के लिए आए थे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। तो वहां पर सबसे पहले रामभद्र वाणी विदास से उनको शिक्षा प्राप्त हुई थी दोनों गुरु गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को। और उसके बाद सार्वभट्टाचार्य से नवदीप में उन्होंने जाकर सार्वभट्टाचार्य के जो सार्वभट्टाचार्य से भी उन्होंने न्याय शास्त्र सीखा था, और उसके बाद फिर उनके भाई से भी उन्होंने सीखा विद्यावाचस्पति से। तो इस तरह से विद्यावाचस्पति से भी संपर्क हुआ था और विद्यावाचस्पति से बाद में दीक्षा भी ग्रहण की। और उस दिन क्योंकि सरकार में अरबी फारसी भाषा बहुत चलती थी, तो मुकुंद ने सोचा कि इनको उर्दू भाषा भी सिखानी चाहिए, अरबी फारसी भाषा भी सिखाना चाहिए इनको। तो वहां से उनको मुकुंद देव ने सप्तग्राम भेज दिया और वहां मुल्ला बिजिंदा नाम का फखरुद्दीन, और उनको कहा कि उनके मित्र थे बड़े गणेश मित्र थे मुकुंद देव के, उन्होंने कहा कि आप इनको अरबी फारसी भाषा सिखाएं क्योंकि आजकल सरकार में ये बहुत ही भाषा चलती है। तो इस तरह से सप्तग्राम पहुंचे और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने कुछ ही समय में अरबी और फारसी भाषा में सीख ली, संस्कृत को वो पहले से जानते थे। तो इस तरह ये इस प्रकार का वर्णन आता है उनके बारे में। और तो इस तरह रात के लिए प्रत्येक दिन श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जब वापस आते थे सायंकाल में, शाम के समय वापस आते थे रामकेली में जब रहने लगे थे, तो वहां पर सनातन गोस्वामी ने बहुत सारे कुंड बनाए थे। आज भी आप रामकेली जाएंगे तो एक कुंड दर्शन कर सकते हैं, सभी कुंडों का दर्शन कर सकते हैं रामकेली में। वहां पे वो जेल भी है जहां सनातन गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया था, तो आज वो जेल भी देखने को मिल सकता है। और वहां पे अलग अलग कुंड बनाए गए थे, जैसे था सनातन सागर, रूप सागर, श्याम कुंड, राधा कुंड, ललिता कुंड, विशाखा कुंड, सुरभि कुंड, इंदुलेखा कुंड। और इसके अलावा उन्होंने कदम के वृक्ष भी लगाए, और ये बताया जाता है कि सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी इन वृक्षों के नीचे बैठकर श्याम कुंड राधा कुंड के पास बैठकर वृंदावन की लीलाओं का स्मरण करते थे। तो इस बार नवाब ने आक्रमण शुरू कर दिया था ओडिशा की ओर, ओडिशा उस समय महाराज प्रताप रुद्र का शासन था, और कई उसने मंदिर तोड़ दिए, कई शिव विग्रह छोड़ दिए, और इस प्रकार जब ये मंदिर तोड़ना शुरू किया उसने, विग्रह तोड़ना शुरू किया, विग्रहों को नुकसान पहुंचना शुरू किया, तो यही वह समय था जब सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी बहुत अधिक चिंतित हो गए थे, बहुत हताश हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे कि कब तक हमें ऐसे नवाब की सेवा में लगना होगा जो हमारे मंदिरों को तोड़ रहा है और विग्रह को नुकसान पहुंचा रहा है, अब बहुत हो गया, अब हम इसकी सेवा नहीं करेंगे। तो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी इस तरह से फैसला किया, और सबसे पहले रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी वास्तव में बहुत चिंतित हो गए। तो रूप गोस्वामी ने उनको कहा सनातन गोस्वामी को कि अब मुझे आप इजाजत है, मैं अब इन सब को छोड़ना चाहता हूँ, इस पद को छोड़ना चाहता हूँ, मैं अब विराग का जीवन बिताना चाहता हूँ, मुझे आप आज्ञा दें। सनातन गोस्वामी से रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी से कहा कि मैं भी वास्तव में सब कुछ त्यागना चाहता हूँ, मैं भी सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ, चलिए हम एक साथ ही चलते हैं, लेकिन आपके ऊपर तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होंगी, अब ऐसा करिए ब्राह्मणों का पंडितों का ध्यान रखिएगा, वैश्यों का ध्यान रखिएगा, मैं वैसे भी आपसे बड़ा हूँ तो इसलिए मुझे जाना चाहिए पहले। तो रूप गोस्वामी ने कहा कि मुझे इसकी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी नवाब आपसे बहुत उम्मीद कर रहा है, अभी भी उसने आक्रमण किया है, अभी हम एक साथ चले जाएंगे तो आपको कैद कर लेगा और फिर वैष्णवों को ब्राह्मणों को बहुत पीड़ा पहुंचाएगा, उनका शोषण करेगा, तो मेरी प्रार्थना यह है कि सबसे पहले मुझे जाने दीजिए कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और धीरे धीरे जब समय आएगा तो आप भी आ सकते हैं, हम एक साथ फिर महाप्रभु की सेवा में लग जाएंगे। तो सनातन गोस्वामी को कहा कि रूप लगा और रूप गोस्वामी ठीक कह रहे हैं, और कहा ठीक है रूप ऐसा करो आप ही पहले जाओ। और उसके बाद उन्होंने अपने रिश्तेदारों को स्थापित किया चंद्रद्वीप में, बागला चंद्रद्वीप में और फतेहाबाद में, और रूप गोस्वामी के पास उस समय 22 लाख सोने की मुद्राएं थी, आज से 500 वर्ष पूर्व रूप गोस्वामी के पास 22 लाख सोने की मुद्रा है, एक नाव भर के मतलब धन था, 22 लाख सोने की मुद्रा है, कितना धन सोच के देखिए आप। तो रूप गोस्वामी ने बहुत आसानी से त्याग दिया, जैसे श्रीनिवास आचार्य कह रहे हैं, त्यक्त्वा तून अवशेष मंडल पति श्रेणी सदा तुच्छवत भूतवा दीन गणेश कौ करणया गोपीन कथा श्रुतौ गोपी भाव साम साब लहरी कल्लौल मग्नौ मुहुर वंदे रूप सनातनौ रघु युगो श्री जीव गोपाल। बड़ी आसानी से त्याग दिया महाप्रभु की सेवा में, ये सबको तुच्छ मानते हुए, ऊंचे ऊंचे पद को, इतना सारा अधिक धन सबको त्याग दिया, महाप्रभु की सेवा में दे दिया। त्यागा शांति इच्छति, भगवद गीता में लिखा है कि त्यागने से शांति की प्राप्ति होती है। और ये जितने भी वैष्णव आचार्य हैं, इसे चैतन्य चेतावन में कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक जगह लिख रहे हैं, महाप्रभुर भक्त गणेर वैराग्य प्रधान, भले वो गोस्वामी हो जिन्होंने पूरा ही विरक्त जीवन बिताया हो, या कोई ग्रस्त भक्त हो, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद कई भक्त ग्रस्त आश्रम में भी थे, ये सबके सब वैरागी थे, ग्रस्त आश्रम में रहते हुए भी वो वैराग्य जीवन बिता रहे थे, और ये तो वैराग्य जीवन उन्होंने अपना ही लिया था पूरी तरह से। तो इस प्रकार जब फतेहाबाद पहुंच गए तो इस तरह से अपने धन को उन्होंने विभाजित किया और 50% धन उन्होंने रखा इसके लिए ब्राह्मणों वैष्णवों को दिया और 25% उन्होंने धन दिया अपने रिश्तेदारों को और 25% उन्होंने रखा ब्राह्मणों के पास आपातकालीन स्थिति के लिए और 10,000 सोने की मुद्राएं रखवाई उन्होंने एक मर्चेंट के पास, क्योंकि जानते थे सनातन गोस्वामी को नवाब इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं, कैद कर लेगा तो कल किसी को देना होगा तो ये धन काम आएगा। तो इसी तरह ये 10,000 सोने की मुद्राएं रखवाई। तो गोस्वामी लोग ये महाप्रभु के सेवा में हमेशा मग्न थे, महाप्रभु से बहुत अत्यंत प्रेम था, लेकिन साथ में बहुत बुद्धिमान भी थे कि वो जानते थे कि धन को कैसे विभाजित करना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि प्रत्येक ग्रस्त को रूप गोस्वामी पाद जी से शिक्षा लेनी चाहिए और इस तरह से धन को विभाजित करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु से मिलने से पहले फतेहाबाद पहुंचे थे रूप गोस्वामी और रूप गोस्वामी जब फतेहाबाद पहुंचे तो वहां से उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा था नीलाचल। उन दिनों नेट की कोई फैसिलिटी नहीं थी, आप जानते हैं, ना कोई मोबाइल फोन था और ना कोई कार था, ना कोई बस थी, ना कोई ट्रेन था, ना कोई हवाई जहाज, कबूतर भेजे जाते थे या फिर किसी एक व्यक्ति को चल के जाना होता था। बैलगाड़ी से भेजेंगे तो बहुत धन खर्च होगा, इसलिए चल के जाना सस्ता पड़ता था सबसे। तो किसी व्यक्ति को भेजा रूप गोस्वामी ने फतेहाबाद से ये पता लगाने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ पे इस समय, नीलाचल जाके पता करो चैतन्य महाप्रभु के बारे में। वो व्यक्ति वापस आया तो बताया कि वो महाप्रभु तो वृंदावन की ओर निकल चुके हैं और झारखंड के जंगलों से निकले हैं। तो रूप गोस्वामी भी वृंदावन की ओर निकल पड़े, ये सोचते हुए कि रूप गोस्वामी ने सोचा कि वृंदावन में जाके मिलेंगे चैतन्य महाप्रभु से। और जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने निकल पड़े, साथ उनके अनुपम गोस्वामी भी उनके साथ में थे, उनके भाई भी साथ में गए। तो जब वो पहुंचे प्रयाग, पहुंचे प्रयाग यानी कि इलाहाबाद जिसको कहते हैं आज के समय, तो प्रयाग जब वहां पहुंचे तो पता चला कि चैतन्य महाप्रभु तो वृंदावन से वापस आ चुके हैं प्रयाग, यानी वृंदावन जाके अब वापस लौट रहे हैं, अब प्रयाग में ही है। और कहां पर है, बिंदु माधव मंदिर में, बिंदु माधव के सामने बहुत उच्च स्वर से संकीर्तन कर रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। तो रूप गोस्वामी को बड़ा आनंद आया, बड़ी खुशी हुई ये सुनकर कि चैतन्य महाप्रभु यहीं पर मौजूद है प्रयाग में। तो चैतन्य महाप्रभु से, देखिए नीलाचल से वृंदावन चैतन्य महाप्रभु गए थे कार्तिक के महीने में, कार्तिक महीने में गए थे और ये अक्टूबर नवंबर का महीना था, और दिसंबर जनवरी के महीने में यानी 1515 या 1516 के बीच में, इन दो महीनों में महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी थी काशी में, और इससे पहले प्रयाग में महाप्रभु ने शिक्षा दी रूप गोस्वामी को 10 दिन के लिए। तो वहां पे बहुत भाव विभोर होकर एक्सटेसी में चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन कर रहे थे और हजारों की तादाद में भक्त लोग के साथ नृत्य कर रहे थे। तो रूप गोस्वामी अनुपम गोस्वामी ने सोचा यहां तो मिलना बड़ा मुश्किल है चैतन्य महाप्रभु से, क्योंकि इतनी भीड़ थी वहां, भक्तों का विशाल समूह था। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है कि हम लोग चैतन्य महाप्रभु से उस दक्षिणाट्य ब्राह्मण के घर में मिलेंगे जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु रुके हैं और जहाँ पे उनको निमंत्रण भी दिया गया था प्रसाद के लिए। तो वहां जब पहुंचे श्री रूप गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी, तो चैतन्य महाप्रभु अनुप गोस्वामी को देखते ही सबसे पहले ये श्लोक बोला कि श्लोक इतिहास समूचे से नामे भक्ता चतुर्वेदी मत भक्ता स्वच प्रिया तस्मा देय तथो ग्राह्य सच पूज्यो यथा है। तो ऐसा कोई ब्राह्मण अगर चार वेदों में दक्ष है, अगर वो मेरा भक्त नहीं है तो वो मुझे प्रिय नहीं है। लेकिन कोई स्वपच भी है, अगर किसी ने चंडाल परिवार में जन्म लिया है, अगर वो कृष्ण का भक्त है वो मुझे बहुत प्रिय है। तो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को देखकर इस तरह से उन्होंने प्रशंसा की, इस कारण से कि रूप गोस्वामी अपने आप को बहुत धीन ही मान रहे थे। उनको ये लगा कि उन्होंने नवाब की सेवा की है, एक यावन की सेवा की है, इस कारण से वो बहुत अधम है, नीच लोगों का संग किया है, तो इस कारण से अपने आप को बहुत गिरावा मान रहे थे। कितनी विनम्रता थी रूप गोस्वामी में। तो रूप गोस्वामी ने तुरंत ही महाश्लोक की रचना कर दी, तत्काल ही उसी समय, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायके कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरकृष्ण। बहुत सुंदर समझाए ऐश्वर्य दादाबाई महाराज ने, उनका प्रवचन है, कथा है, साधक की कथा की है महाप्रभु के बारे में, महाप्रभु की शिक्षा रूप गोस्वामी को प्रयाग। तो महाराज बहुत अच्छा समझाते हैं, बताते हैं नमो महावदन्याय। रूप गोस्वामी कहते हैं कि आप बहुत बड़े दानी हैं। किसको बोल रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं दानी हूं, मैं तो भिखारी हूं, मैं भिक्षुक हूं, मैं तो स्वयं मांगता हूं, मैं कैसे भला दान दे सकता हूं किसी को। तो श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि आपने धन का दान नहीं दिया है, आपने क्या दान दिया है? कृष्ण प्रेम प्रदायते, आपने कृष्ण प्रेम का दान किया है, यह है आपका दान। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय, आप साक्षात श्री कृष्ण हैं। उसे साक्षात श्री कृष्ण हैं, लेकिन मेरा नाम तो कृष्ण ही है, मैं तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हूं, मेरा नाम तो निमाई है। फिर बोलते हैं कृष्ण चैतन्य नाम ने, आप साक्षात कृष्ण हैं लेकिन कृष्ण चैतन्य के नाम से प्रकट हुए हैं। फिर बोलते हैं वो ठीक है, आपने मुझे कहा कि मैं कृष्ण हूं और कृष्ण चैतन्य के नाम से प्रकट हुआ हूं, लेकिन मेरी तो कांति श्याम वर्ण की नहीं है। तो श्री रूप गोस्वामी कहते हैं गौरकृष्ण नमः, आप साक्षात कृष्ण हैं और श्री कृष्ण की चैतन्य के नाम से प्रकट हुए हैं और आपने गौर कांति को धारण किया हुआ है, आप वही श्री कृष्ण हैं। तो इस सारे श्री रूप गोस्वामी बताते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं और महाप्रभु कहते हैं कि वास्तव में कितने कृपालु हैं श्री कृष्ण, जिन्होंने आपका उद्धार किया है और इस कारण से आप यहां पर आए हो। और रूप गोस्वामी के साथ में उठा के चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि सनातन गोस्वामी कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि नवाब ने सनातन को कैद करके रखा है और पता नहीं वो कब रिहा होंगे। महाप्रभु ने कहा कि वो रिहा हो चुके हैं, उनका उद्धार हो चुका है, उस कारागार से निकल चुके हैं। चैतन्य महाप्रभु पहले से जानते थे लेकिन वो ऐसे ही पूछ रहे थे रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी चकित हो गए और बड़े आनंदित हुए कि सनातन गोस्वामी से जल्दी उनकी मुलाकात होगी और वो भी जल्दी आएंगे यहाँ महाप्रभु की सेवा में। तो अगले दिन जो है वो वापस आ गए रूप गोस्वामी भक्त के रूप घर में, जो त्रिवेणी नदी के तट पर ही रह रहा था, और भक्त के यहाँ पर रहने की और प्रसाद की व्यवस्था की गई थी। तो उस समय श्रीपाद वल्लभाचार्य वहां मौजूद थे। श्रीपाद वल्लभाचार्य अडैल गांव में रहते थे। यमुना जी के उस पार या संगम के उस पार एक गांव है जिसका नाम है अडैल, श्रीपाद वल्लभाचार्य का निवास स्थान वहां पर। तो श्रीपाद वल्लभाचार्य को पता चला कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए हैं और श्रीपाद वल्लभाचार्य की बड़ी इच्छा हुई चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। और श्रीपाद वल्लभाचार्य जब उन्होंने रूप गोस्वामी को देखा, महाप्रभु ने उनको इंट्रोड्यूस किया कि ये रूप गोस्वामी है, ये अनुपम गोस्वामी है। और चैतन्य महाप्रभु ने जब परिचय दिया तो श्रीपाद वल्लभाचार्य आगे बढ़े और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का आलिंगन करने के लिए। रूप गोस्वामी अपने आप को बता रहे थे कि वो बहुत अधम है, बहुत गिरे हुए हैं, नीच जाति के हैं, नीच संगी हैं। तो जब श्रीपाद वल्लभाचार्य ने उनका आलिंगन करना चाहा तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ठहरी ठहरी श्रीपाद, आप इनका आलिंगन क्यों कर रहे हैं? ये तो बहुत नीच है, बहुत अधम है, इन्होंने यावरों का संग किया है और आप जैसे उच्च कोटि के आर्य या वैदिक ब्राह्मण का इसका स्पर्श करना शोभा नहीं देता। तो श्रीपाद वल्लभाचार्य कहते हैं कि मैं कैसे मान लूं कि ये गिरे हुए हैं, मैं तो देख रहा हूं कि जीवा में हमेशा कृष्ण का नाम का उच्चारण हो रहा है इनके जीवा के द्वारा, ये तो हमेशा कृष्ण का नाम ले रहे हैं, ये कैसे गिरे हो सकते हैं? तो श्रीपाद वल्लभाचार्य ने श्रीमद भागवत से श्लोक उद्धृत किया, अहो गतो सुमचतो गरिया या जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुष्ट पश्च जुहु शत्रुर आर्य ब्रह्मानुचुर नाम गृहंती ये थे। यानी कि जिसने भी यज जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसने भी जीवा के अग्रभाग से भी अगर कृष्ण का नाम ले लिया है तो वास्तव में क्या है, उसने सारे यज्ञ कर लिए हैं, सारी तपस्या उसने कर ली है और कुछ उसको करने की आवश्यकता नहीं है। और वास्तव में जो इस नाम का उच्चारण कर रहा है वो सर्वोपरि व्यक्ति है, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, पहले संसार की नजर में वो कितना भी गिरा हो, लेकिन जिसके मुख में कृष्ण का नाम आ जाता है वो सर्वोच्च व्यक्ति है, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। और ऐसे व्यक्ति ने सभी यज्ञ कर लिए हैं, सारी तपस्या कर ली है, सभी तरह का ध्यान दे दिया है और कुछ करने लायक नहीं है ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसा श्रीपाद वल्लभाचार्य ने श्लोक उदित किया तो चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न। चैतन्य महाप्रभु ने कहा वाह क्या बात बोली आपने। और बाद में श्रीपाद वल्लभाचार्य को दर्शन प्राप्त हुआ जब उन चैतन्य महाप्रभु को देखा, चैतन्य महाप्रभु उनके ऊपर भी कृपा की और साक्षात श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु। और इस तरह श्रीपाद वल्लभाचार्य को ये विशेष आशीर्वाद मिला और श्रीपाद वल्लभाचार्य ने निमंत्रण दिया अपने घर, उनको बुलाया और श्री चैतन्य महाप्रभु उनके साथ नाव में गए और उनके घर पहुंचे। वहां पर श्रीपाद वल्लभाचार्य उनके चरण धोए और चरणामृत लेके फिर उनके घर में सबको वितरण किया, स्वयं भी चरणामृत पिया और उनके घर के सारे लोग सभी सदस्यों ने चरणामृत का पान किया और गदगद हुए, सब भावगोर हुए, भाववेश में आ गए क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का साक्षात दर्शन और चरणामृत प्राप्त हुआ था। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद परोसा गया और उसके बाद स्वयं श्रीपाद वल्लभाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु की चरण सेवा की, यानी कि उनको मसाज किया। और इसके बाद जब खबर मिली कि श्री चैतन्य महाप्रभु पहुंचे हुए हैं, वहां पर भी हजारों हजारों लोग पहुंचने लगे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अब मैं और यहां पर नहीं रह सकता, मुझे यहां से जाना होगा। तो फिर वापस संगम यानी कि यमुना जी को पार करके वापस दशाश्वमेध घाट पहुंच गए और वहां पे ही एक कुटिया में रहने लगे और जिस स्थान में रूप गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी भी रहने लगे। तो दशाश्वमेध घाट में वहां पर महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को 10 दिन की शिक्षा दी थी जो कि चैतन्य चरितामृत में उपलब्ध है। ये शिक्षा मध्य लीला अध्याय 19 और बहुत सुंदर वर्णन यहां पर दिया गया है। और इस संवाद से पहले श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर एक श्लोक की रचना किए हैं और बता रहे हैं, वृंदावनीयाम रसकेली वार्ताम कालेन रुद्धाम निज शक्ति मुक्ता संचार रूपे वतनो पुनः सा प्रभुर विदो प्राग एवं लोक सृष्टि। इस विराट जगत की सृष्टि करने के पूर्व भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में सृष्टि की विस्तृत जानकारी प्रकाशित की और वैदिक ज्ञान प्रकट किया। ठीक उसी तरह से महाप्रभु ने भगवान कृष्ण की वृंदावन लीलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए रूप गोस्वामी के हृदय को आध्यात्मिक शक्ति से संचारित किया। श्री रूप गोस्वामी शक्ति से वृंदावन कृष्ण की उन लीलाओं को पुनर्जीवित कर सके जो प्राय विस्मृत हो चुकी थी। इस तरह उन्होंने सारे विश्व में कृष्ण भावनावृत का विस्तार किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने वास्तव में रूप गोस्वामी को ये शक्ति प्रदान की थी जिसके कारण जो है वो कई ग्रंथों की रचना कर पाए और वृंदावन जाकर कई लीला स्थलियों का पता लगा पाए। तो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु को ये शक्ति प्रदान की थी। और बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है इसमें जो महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को दी है, इस शिक्षा को प्रत्येक भक्त को पढ़ना चाहिए। और इस शिक्षा में कुछ शिक्षाओं का वर्णन हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि कृष्ण भक्त जो है कितना दुर्लभ है। बताते हैं लाखों लाखों मुक्तों में से कोई एक होता है जो कृष्ण भक्त बनता है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शौकली अशांत। ये भुक्ति मुक्ति सिद्धि की जो इच्छा करते हैं ये सब के सब कामी है। कृष्ण भक्त क्योंकि निष्काम होता है इसलिए उसका मन शांत होता है। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु गोस्वामी को बता रहे हैं। और साथ में उन्होंने और भी बहुत सुंदर बातें बताई। उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए, विरजा ब्रह्मलोक भेदी परम व्योम गाय। भक्ति लता बीज को सींचने पर बीज अंकुरित होता है और लता धीरे धीरे ब्रह्मांड की दीवारों को भेद कर वैकुंठ तथा भौतिक जगत के बीच स्थित विरजा नदी के पार चली जाती है। यह ब्रह्मलोक या ब्रह्म ज्योति पहुंचती है। ब्रह्मलोक की परत को भी भेद कर भक्ति लता परम व्योम तथा गोलोक वृंदावन पहुंच जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि जीव जो है पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहा है, असंख्य जीव ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहा है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कोई भाग्यवान जीव होता है जिसके ऊपर गुरु और कृष्ण की कृपा होती है और ऐसे भाग्यवान जीव को भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। और फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं माली होया सही करे बीजारोपण, श्रवणादि सही करे सेचन। माली क्या करता है? बीजारोपण करता है, लेकिन उसका सेचन किसके द्वारा किया जाता है? श्रवण और कीर्तन के माध्यम से किया जाता है। और उसके बाद फिर उन्होंने बताया तवे जाए तदुपरी गोलोक वृंदावन, कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण। हृदय स्थित होने से तथा श्रवण कीर्तन द्वारा सींचे जाने से भक्ति लता अधिकाधिक बढ़ती जाती है। इस तरह से इसे कृष्ण के चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष का आश्रय प्राप्त होता है, जो परम योग के सर्वोच्च क्षेत्र गोलोक वृंदावन में निरंतर वास करते हैं। फिर आगे बता रहे हैं ये लता गोलोक वृंदावन ग्रह में खूब पड़ती है और यही इसमें कृष्ण प्रेम रूपी फल लगता है। यद्यपि माली भौतिक जगत में रहता है किंतु वह नियमित रूप से श्रवण तथा कीर्तन रूपी जल से उसे सींचता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं जब ये भक्ति लता का विकास होता है तो कई बार ऐसा होता है कि जंगली पौधे भी साथ साथ होने लगते हैं। और ये जंगली पौधे हैं क्या? कोटि नाटी जीव हिंसा निषेधाचार लाभ पूजा प्रतिष्ठा जत उप शाखा घर। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उप शाखा है, इस तरह से ये शाखा है, मूल शाखा है। देखिए ये मूल शाखा है, ये भक्ति लता की शाखा है और ये है उप शाखा। और जब तक इस उप शाखा चेतन नहीं होगा ये भक्ति लता ऊपर नहीं जाएगी, भगवान के चरणों तक नहीं जाएगी। तो इस उप शाखा का छेदन करना होगा सबसे पहले। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पहले सबसे पहले इस उप शाखा का छेदन करो। क्या है उप शाखा? कूटी नाती जीव हिंसा निषिद्ध आचार और लाभ पूजा प्रतिष्ठा। इसका जब छेदन करेंगे तो ये जो भक्ति लता है बढ़ेगी और भगवान के चरणों तक पहुंचेगी। और क्या वाला बताई उन्होंने? यदि वैष्णव प्रात उठे हाथी माता, उपाड़े व छंडे तार सुखी जाए पाता। यदि कोई भक्त भौतिक जगत में भक्ति लता का विकास करते हुए किसी वैष्णव के चरणों में अपराध करता है तो उसके अपराध की तुलना उस पागल हाथी से की जाती है जो लता को उखाड़ कर उसे छिन्न भिन्न कर देती है। इस तरह लता की पत्तियां सूख जाती हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इस तरह से उनको शिक्षा दिए, पता है कि भक्ति के मार्ग में ये बहुत बड़ी बाधा है। किसी वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं तो ये भक्ति लता सूख जाती है। और उसके बाद उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के अलग अलग स्टेजेस भी बताया, अलग अलग स्तर बताए। आदौ सदा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति स्यात् तथो निष्ठा रुचि तथा अथ आसक्ति ततो भाव तथा प्रेमा भजन्ति सारकानाम अयम प्रेमनः प्रादुर्भवेत् क्रमः। तो श्री रूप गोस्वामी यहाँ पर क्या बताया, यानी कि चैतन्य महाप्रभु गोस्वामी को यह शिक्षा दे रहे हैं। तो उस बाद में श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसानुसंध ग्रंथ में बड़े विस्तार से इसकी व्याख्या की। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी प्रयाग में, उस शिक्षा के आधार पर दो ग्रंथों की रचना हुई थी। श्री रूप गोस्वामी ने एक तो भक्ति रसानुसंध की ग्रंथ की रचना की थी और केवल माधुर्य रस के बारे में उन्होंने चर्चा की एक अलग से ग्रंथ में, जिसका नाम उन्होंने दिया उज्जवल नीलमणि। तो इस श्लोक में क्या बता रहे हैं, आदोश श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया तथो अनंत निवृत्ति इत्याद तथो निष्ठा रुचि सता अत आसक्ति सतो भाव तथा प्रेमा उदर्चति साधका नाम अयम प्रेम प्रादुर्भवे क्रमा। ये जो आखिरी लाइन है प्रादुर्भवे क्रमा का मतलब होता है कि दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। जैसे कि भागवत के उस श्लोक में भी बताया गया श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमशति, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है श्रद्धा से लेकर प्रेम तक, छलांग नहीं मार सकते हैं। ये नहीं कि कोई आपको बताए कि आप जो है गोलोक धाम में मंत्री हो और खुद का मंत्री माने लग जाए अभी से। कोई अगर आपको बता भी देता है कि आप प्रधानमंत्री बनने वाले हो 10 साल के बाद, तो 10 साल के बाद बनोगे, अभी आप प्रधानमंत्री नहीं हो। तो इसी तरह से अगर कोई हमें बता भी दे कि हमारा स्वरूप क्या है, उससे कोई विशेष लाभ नहीं है, क्योंकि ये भक्ति के सारे स्टेज से गुजरना पड़ेगा। और भक्ति की सीढ़ी जो प्रारंभिक सीढ़ी है श्रद्धा, श्रद्धा से प्रेम तक पहुंचने का ये क्या है क्रमशः विकास, ग्रेजुअल प्रोसेस है। जिस तरह से कोई बाई चांस पीएचडी नहीं बन जाता है, कि वो कहीं ये नहीं कह सकता कि बाई चांस है बिकम पीएचडी, तो सबसे पहले तो जन्म लेते ही सबसे पहले थोड़े जब बड़े होते हैं तो स्कूल जाना पड़ता है, फिर कॉलेज जाना पड़ता है, फिर थीसिस करना पड़ता है। ये सारे ग्रेजुअल प्रोसेस है, प्रकृति का नियम है। कुछ भी हमें प्राप्त करना है तो वो क्रमशः ही प्राप्त होगा। पेड़ से अगर आम तोड़ना है तो सीधा आम के ऊपर छलांग नहीं मार सकते हैं, हो सकता है नाके बल गिरेंगे। तो हमें तो धीरे धीरे पेड़ में चढ़ना पड़ेगा और शाखाओं से गुजरते हुए धीरे धीरे जो है टहनियों तक पहुंचना होगा। तो कहने का मतलब है क्रमशः विकास है भक्ति, एक भक्ति में बढ़ना एक क्रमशः विकास है। केवल मन से कल्पना कर देना कि मैं मंत्री हूं या मैं सखा हूं, उससे कोई विशेष फायदा नहीं होगा। तो ये श्री रूप गोस्वामी की शिक्षा है। और इस तरह से भक्ति रसाम सिंधु ने बड़ा ही विस्तार से वर्णन किया है श्री रूप गोस्वामी ने। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को बहुत अच्छी तरीके से हम सबको समझना है। चैतन्य महाप्रभु ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये भक्ति की जितनी भी सीढ़ियां हैं इसको एक एक करके आगे बढ़ना होता है, और कभी भी हम छलांग मार कर जो है कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते। तो इस तरह से महाप्रभु ने बहुत सारी शिक्षा दी श्री रूप गोस्वामी को प्रयाग में, और प्रेम की भी व्याख्या की। चैतन्य महाप्रभु ने जिस तरह से प्रेम की व्याख्या की जो श्री रूप गोस्वामी को बताया, और श्री रूप गोस्वामी ने जिस तरह से प्रेम का वर्णन किया है भक्ति रसाम सिंधु में या उज्जवल नीलमणि, आज से पहले किसी संप्रदाय में और किसी भी वैष्णव आचार्य ने इस तरह की व्याख्या नहीं की जिस तरह से श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने किया है। ये श्री रूप गोस्वामी पाद जी का विशेष योगदान है जो किसी संप्रदाय में किसी भी आचार्य ने नहीं किया है, किसी वैष्णव संप्रदाय में भी किसी आचार्य ने नहीं किया, वो केवल श्री रूप गोस्वामी ने किया है। प्रेम की आगे की सीढ़ियां भी बताई हैं कि प्रेम के आगे भी कोई हो सकता है, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था पहले। तो क्या क्या बताया उन्होंने, प्रेम से आगे उन्होंने बताया कि स्नेह होता है, यानी कि प्रेम और प्रगाढ़ होता जाता है तो उसके आगे की सीढ़ियां भी होती हैं। प्रेम के आगे स्नेह, स्नेह के आगे मान, मान के आगे प्रणय, प्रणय के आगे राग, राग के आगे अनुराग, अनुराग के आगे महाभाव, गोपियों का महाभाव। और महाभाव के भी उन्होंने दो डिविजन बताए, रूढ़ महाभाव और अधिरूढ़ महाभाव। और अधिरूढ़ महाभाव के भी और 3 डिविजन बताए, मोहन, मोहन आख्य महाभाव, और मोदन आख्य महाभाव, और मानन आख्य महाभाव। और ये जो मादन आख्य महाभाव है ये श्री कृष्ण में भी नहीं पाया जाता है, केवल श्रीमती राधारानी में ये मादन आख्य महाभाव। तो इस तरह से ये प्रेम की अलग अलग स्तर, अलग अलग सीढ़ियां, यानी कि प्रेम बढ़कर आगे मादन आख्य महाभाव तक पहुंच जाता है, और मादन आख्य महाभाव स्वरूपनी है स्वयं श्रीमती राधारानी या फिर श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी ने जो वर्णन किया है ये व्याख्या किसी संप्रदाय में नहीं मिलेगी आपको, किसी वैष्णव आचार्य ने नहीं दी इस प्रकार की व्याख्या। और श्रील रूप गोस्वामी और भी बहुत अच्छा वर्णन कर रहे हैं। देखिए श्रील रूप गोस्वामी ने साधना भक्ति को 2 डिविजन में बांटा है। उन्होंने कहा है कि 2 प्रकार की साधना होती है, एक है वैदिक साधना और एक है रागानुगा साधना। रागानुगा भी साधना है, परफेक्शन नहीं है। वैदिक साधना में प्रारंभिक में सभी भक्तों को लगना चाहिए। कई बार भक्त बोलते हैं कि हमारे संप्रदाय में तो रागानुगा भक्ति की विशेषता है, आप सब तो वैदिक भक्ति में लगे हैं। अगर ऐसी बात है तो श्री रूप गोस्वामी फिर वैदिक साधना भक्ति का वर्णन करते ही नहीं भक्ति साधन केवल राधा रूप का सामना का ही वर्णन करते हैं। तो जब उन्होंने वर्णन किया तो इसका मतलब यह है कि हमें वैदिक साधना में भी लगना पड़ेगा, रागानुगा साधना में पहुंचने से पहले। वैदिक साधना के बारे में श्रील रूप गोस्वामी ने जैसे बताया, भक्ति की श्रेणियां बताए, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। तो श्रील रूप गोस्वामी का कहना है जब हम लोभ की स्थिति में पहुंचते हैं, रुचि की स्थिति में पहुंचते हैं, वहां से राग मार्ग की साधना प्रारंभ होती है। निष्ठा के स्तर पर साधना होती है, लेकिन उस रागानुगा साधना भक्ति का केवल वहां पे आभास होता है, और रुचि के स्तर में वास्तव में लोभ जागृत होता है। उसको कहते हैं रागानुगा साधना। किसके लिए लोभ जागृत होता है? एक विशेष परिकर के लिए जो वृंदावन में है, द्वारका में भी नहीं, मथुरा में भी नहीं, जो वृंदावन में है, ब्रज में है, ऐसे परिकर के प्रति आकर्षण जागृत होता है। क्या आकर्षण? कि यह परिकर किस तरह से सेवा करता है राधा रानी की, या कृष्ण की सेवा करता है, कैसे सेवा करता है, है ना? वो सारी जानकारी प्राप्त करना चाहता है फिर साधक, किसके बारे में? उस नित्य परिकर के बारे में। और ऐसे में उसकी रुचि होती है, श्रवण कीर्तन में रुचि आती है, तो वो सुनना चाहते हैं आदि सारी ऐसे परिकर के बारे में। तो ऐसे श्रवण कीर्तन को जिसमें इंटरनल एब्जॉर्प्शन अधिक होता है, मानसिक सेवा अधिक होती है, इसको कहते हैं रागानुगा साधना। राग का मतलब होता है डीप अटैचमेंट, और इस तरह से रुचि से कोई आसक्ति के स्तर पर पहुंचता है, आसक्ति के स्तर पर अपने स्वरूप के कुछ लक्षण प्रकट होते हैं, और उसमें इतने अधिक डिटेल में तो नहीं जा पाते हैं, लेकिन आसक्ति के स्तर पर लीलाओं का स्मरण करना बड़ा स्वाभाविक हो जाता है। कैसे? इस भौतिक जगत में भी, भौतिक संसार में भी हमें किसी से आसक्ति होती है तो उसका स्मरण बड़ी आसानी से कर पाते, उसके नाम का, उसके कार्यकलाप का, उसके रूप का, उसके गुणों का हम स्वाभाविक रूप से स्मरण कर लेते हैं। इसी तरह से जब आसक्ति हो जाती है कृष्ण से, उनके नाम से, रूप से, गुणों से, लीलाओं से, तो उनका स्मरण करना बहुत आसान हो जाता है। और ऐसे आसक्ति में स्मरण करते करते ऐसा साधक जो है वो भाव की अवस्था में पहुंच जाता है, जिसको स्वरूप सिद्धि कहते हैं। तो ये भक्ति की अलग अलग सीढ़ियों का वर्णन किया गया है। और फिर श्रील रूप गोस्वामी ने ये भी बताया कि मधुर रस के प्रेम के दो स्तर बताए, प्रेम के दो डिविजन्स बताए हैं। एक होता है कामानुगा और दूसरा होता है संबंधानुगा। जो साधक हैं दो प्रकार के होते हैं, कामानुगा साधक और संबंधानुगा साधक। और ब्रज में जो नित्य परिकर हैं उनको कहते हैं कामात्मिका साधक या संबंधात्मिका साधक। कामानुगा कौन है? कामानुगा वो है दो प्रकार के, एक होते हैं संभोग इच्छामयी और एक होते हैं तत्त भाव इच्छामयी। संभोग इच्छामयी यानी कि उन गोपियों की तरह जो कृष्ण से निजी संग प्राप्त कर पाती हैं, और तत्त भाव इच्छामयी का मतलब होता है कि कृष्ण की वो सीधा सेवा नहीं करना चाहते हैं, केवल राधा रानी की सेवा करना चाहते हैं या राधा रानी के माध्यम से कृष्ण की सेवा करते हैं। वो कहते हैं तत्त भाव इच्छामयी, और वो मंजरियां होती हैं। तो ऐसे में जो प्रेम है वो कहां तक जाता है? महाभाव तक जाता है। गोपियों का प्रेम कहां तक जाता है? महाभाव तक जाता है। और कोई अगर वात्सल्य रस में है या सख्य रस में है, समग्र शांत रस में है, शांत रस में प्रेम तक ही कोई पहुंच सकता है। शांत रस में प्रेम की स्थिति कहां तक? प्रेम तक ही है। और दास्य रस में ये प्रेम जो है राग तक पहुंच सकता है, अधिक से अधिक स्नेह मान प्रणय राग, बस दास्य रस। और वात्सल्य रस और सख्य रस में ये और अधिक बढ़ता है। वात्सल्य रस में या साक्ष्य रस में स्नेह मान प्रणय और राग और अनुराग, अनुराग तक जाता है वात्सल्य रस और सख्य रस। और मधुर रस में जिसमें संभोग इच्छामयी होता है या तो, या फिर तत्त भाव इच्छामयी, जिसमें स्नेह से प्रारंभ होकर ये महाभाव तक जाता है। तो इस तरह के ये डिवीजन श्रील रूप गोस्वामी ने जो दिया है, इस तरह का डिवीजन, इस तरह का वर्णन किसी भी आचार्य ने, किसी भी संप्रदाय ने नहीं दिया। तो श्रील रूप गोस्वामी का ये बड़ा विशेष योगदान है और ये सारी शिक्षा है उनको प्राप्त हुई थी श्री चैतन्य महाप्रभु से संक्षिप्त रूप में रूप गोस्वामी को 10 दिन में। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि मैंने आपको इससे बताया है, इसका आप बड़े विस्तार से वर्णन करना, ग्रंथों की रचना करते हुए आप बड़े विस्तार से वर्णन करना। इस तरह से महाप्रभु को रूप गोस्वामी महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शिक्षा दी भक्ति रस के बारे में लगभग 10 दिन के लिए और महाप्रभु उसके बाद फिर बनारस के लिए चल पड़े। तो रूप गोस्वामी ने कहा कि महाप्रभु मैं भी आपके साथ जाऊंगा। तो महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं आप वृंदावन जाइए और वृंदावन से बाद में फिर वापस आ जाना नीलाचल उससे मिलने के लिए, क्योंकि आप इसके बाद फिर बनारस जाकर चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को भी शिक्षा देते हैं 2 महीने के लिए। तो महाप्रभु इस तरह चल पड़े थे और रूप गोस्वामी ने जब देखा कि चैतन्य महाप्रभु चले गए तो रूप गोस्वामी वहीं पर मूर्छित हो गए। मथुरा जब पहुंचे तो वहां वो सुबुद्धि राय से मिले थे। सुबुद्धि राय ये गौड़ देश में नवाब हुसैन शाह के साथ में थे और नवाब हुसैन शाह से बड़ा अच्छा इनका नमन था। एक समय तो ये नवाब जो है सुबुद्धि राय के आश्रित था और के सेवक के रूप में था। उन दिनों उनको एक तालाब बनवाना था और उसमें कुछ कमी आ गई थी तो सुबुद्धि राय ने शाह को चाबुक मारा था नवाब को। तो ये बात फिर नवाब ही भूल गया क्योंकि लेकिन सुबुद्धि राय ने बहुत ध्यान भी रखा था नवाब का, बहुत अधिक प्रेम भी दिया था, एक भाई की तरह उसका लालन पालन किया था। जब नवाब नवाब बन गया यानी कि नवाब का पद उसको मिल गया तो सुबुद्धि राय तो फिर कुछ भी नहीं था। तो एक दिन जब वो वस्त्र बदल रहा था नवाब तो उसके पीठ में चाबू के निशान थे जो उसकी पत्नी ने देख लिए। मैंने कहा ये निशान कहाँ से आया आपको बताइए। पता नहीं 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 कोई बात नहीं नहीं बताइए कहाँ किसने मारा आपको चाबू। तो उसने बताया कि इस तरह से मैं तालाब बनवा रहा था मुझसे कुछ गलती हो गई तो मुझे चाबू से मारा गया। मैंने कहा तुरंत आप उसको गिरफ्तार करिए, उसको मृत्यु दंड दीजिए, मैं चाहती हूँ कि आप उसको मार डालें। तो नवाब बोले नहीं नहीं उसने मेरी सहायता भी बहुत की है, मुझे प्रेम भी बहुत दिया था, मुझे अपने भाई की तरह रखा, मैं कैसे उसको मार सकता हूँ, ये अच्छा नहीं होगा। तो जब जब नवाब की पत्नी ने बहुत ज़्यादा अनुरोध किया, बहुत बार कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है आप ऐसा करिए तो उसको आप ब्राह्मण समाज से निशासित कर दीजिए, उसके ऊपर जल छिड़कें। तो उन दिनों क्या होता था कि अगर आप यावण के पात्र से कुछ जल पी लेंगे या वो जल को छिड़क दिया जाएगा अगर आपके ऊपर तो ब्राह्मण समाज से आपको निष्कासित कर दिया जाता हिंदू समाज। तो फिर यही किया गया, सुबुद्धि राय के ऊपर जल छिड़का और सुबुद्धि राय को फिर उस ब्राह्मण समाज से निष्कासित कर दिया गया। तो सुबुद्धि राय बहुत चिंतित हो गए कि क्या करूं, फिर वहां से काशी चले गए। काशी जब पहुंचे तो ब्राह्मण से उन्होंने प्रार्थना की, पूछा कि मैं क्या करूं, मुझे तो इस तरह से ब्राह्मण समाज से निष्कासित कर दिया गया है, मुझे क्या प्रायश्चित करना चाहिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि ऐसा करो खोलता हुआ घी पी लो, यही तुम्हारे लिए प्रायश्चित। तो फिर सुबुद्धि राय बहुत चिंतित हो गए, महाप्रभु के पास गए। तो महाप्रभु ने कहा ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ब्रज जाओ और ब्रज में रोज लौटो और ब्रज की धूली को प्रणाम करो, अपने मस्तक में लगाओ और निरंतर हरिनाम हो, और एक हरिनाम इतनी शक्ति है कि असंख्य पाप कट जाते हैं, उतने पाप कर भी नहीं सकते हो। तो उससे आज सुबुद्धि राय जो है ब्रज में आए थे और सुबुद्धि राय के ऊपर ये भी जिम्मेदारी थी कि जो भी वैष्णव आएंगे ब्रज में वृंदावन में उनका देखभाल करना है, रहने की व्यवस्था करनी है। तो इस तरह से जब रूप गोस्वामी आए थे तो सुबुद्धि राय रूप गोस्वामी को ब्रजमंडल परिक्रमा में ले गए, 12 वनों का दर्शन कराया रूप गोस्वामी को सुबुद्धि राय ने। तो इस तरह से कई लीला स्थलियों का दर्शन किया था। लोकनाथ गोस्वामी भूगर गोस्वामी भी उस समय लीला स्थलियों का पता कर रहे थे। लोकनाथ गोस्वामी ने जैसे हमने पहले भी बताया था लगभग 2333 लीला स्थलियों का पता लगाया था लोकनाथ गोस्वामी ने ब्रज। रूप गोस्वामी लेकिन उनसे मिल नहीं पाए थे क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य था कि सनातन गोस्वामी से कब मिलेंगे, कि सनातन गोस्वामी से उनका बड़ा विशेष प्रेम था, उनके भाई भी थे, उनके गुरु तुल्य थे और इस कारण से रूप गोस्वामी इंतजार कर रहे थे कि कब सनातन गोस्वामी आएंगे वृंदावन, कब उनसे मुलाकात होगी। तो 1 महीने के लिए ही रूप गोस्वामी ब्रज में रहे और उसके बाद फिर अनुपम के साथ काशी के लिए चल पड़े क्योंकि उन्होंने महाप्रभु से ही सुना था कि काशी में वो काशी जा रहे हैं, तो इसलिए वो काशी की तरफ निकल पड़े थे। कि उनको लगा कि इस रस्ते में सनातन गोस्वामी को कहीं मिल पाएंगे वो काशी जाते हुए। लेकिन रूप गोस्वामी गंगा जी के तट से निकले थे और सनातन गोस्वामी उस समय काशी से वृंदावन की ओर निकल पड़े थे राजपथ की तरफ से। रूप गोस्वामी गंगा जी के रास्ते से जा रहे थे और सनातन गोस्वामी कहाँ किस रास्ते से काशी से वृंदावन जा रहे थे, राजपथ से यानी कि हाईवे से, नेशनल पथ हाईवे से निकल रहे। तो रूप गोस्वामी जब काशी पहुंचे तो उनको पता चला कि सनातन गोस्वामी तो वृंदावन जा चुके हैं, तो उनको बड़ा दुख हुआ। लेकिन साथ में सोचने लगे मैं क्या करूं, कि मैं वृंदावन वापस जाऊं या फिर मैं नीलाचल जाऊं महाप्रभु से मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है अब मैं नीलाचल ही जाता हूं। तो रूप गोस्वामी इस तरह से जगन्नाथपुरी की ओर निकल पड़े। रूप गोस्वामी नीलाचल पहुंचे और अनुपम गोस्वामी, और लेकिन अनुपम गोस्वामी ने कहा कि कुछ उनको घर की भी व्यवस्था करनी है, जाने से पहले हम देख लेंगे जो भी हमें सेटलमेंट करना है, फाइनलाइज करना है, उनको धन इत्यादि देना है, तो उनके परिवार का भी थोड़ी व्यवस्था करनी थी। तो इस तरह से फिर वहां भी गए सबसे पहले। और लेकिन हुआ क्या कि अनुपम गोस्वामी का अब जीवन अंत हो चुका था, अनुपम गोस्वामी अब शरीर छोड़ चुके थे। तो रूप गोस्वामी ने सारी व्यवस्था कर दी और जीव गोस्वामी को भी उनके साथ भेज दिया और परिवार के साथ भेज दिया। अनुपम गोस्वामी के ही सुपुत्र थे जीव गोस्वामी, तो बाकला चंद्र द्वीप में भेज दिया गया था जीव गोस्वामी को भी। और उसके बाद फिर रूप गोस्वामी अकेले ही नीलाचल की ओर निकल पड़े। तो इस तरह रूप गोस्वामी जो है निकल पड़े। सनातन गोस्वामी की तरह रूप गोस्वामी बहुत अपने आप को अधम और बहुत गिरावा मानते थे, क्योंकि जब जगन्नाथपुरी आ गए तो जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए मंदिर में कभी नहीं गए रूप गोस्वामी। सनातन गोस्वामी भी कभी जगन्नाथ जी का मंदिर नहीं गए जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। हरदास ठाकुर भी कभी जगन्नाथ जी का दर्शन करने नहीं गए। और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु क्या करते, प्रत्येक दिन जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेके आते हरदास ठाकुर की कुटिया में, और वहां पे जब लेके आए तो फिर रूप गोस्वामी से मुलाकात हुई पहली बार जगन्नाथपुरी में। रूप गोस्वामी को देखकर चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन किया, रूप गोस्वामी एकदम से भाव विभोर हो गए, गदगद हो गए, और महाप्रसाद पाके प्रत्येक दिन ऐसा ही होता कि महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेके आते और रूप गोस्वामी हरदास ठाकुर महाप्रसाद को सबसे पहले ग्रहण करते, उसके बाद फिर रूप गोस्वामी ग्रंथों की रचना करते और हरदास ठाकुर जो है हरिनाम लेते। महाप्रभु से क्या वार्तालाप होती, महाप्रभु ने यही पूछा कि वृंदावन में कैसा है सब कुछ, वहां पर कैसा चल रहा है। उसके बाद उनकी चर्चा केवल राधा कृष्ण के बारे में होती। महाप्रभु रूप गोस्वामी से राधा कृष्ण की लीलाओं में चर्चा करते और प्रत्येक महाप्रभु हरदास ठाकुर की कुटिया में इस तरह से आते। रथ यात्रा का समय हो गया था और सैकड़ों भक्त बंगाल से जगन्नाथपुरी आ रहे थे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भाग लेने के लिए, क्योंकि जब भक्त आते थे तो भक्त कभी भी जगन्नाथ जी का दर्शन करने पहले नहीं जाते थे और सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने जाते थे। यानी कि इतना लंबा सफर तय करने के बाद सबसे पहले उनकी इच्छा होती थी कि चैतन्य महाप्रभु से मिले, जगन्नाथ जी का दर्शन वो सब बाद में करते, महाप्रभु स्वयं सभी भक्तों को लेके जाते हैं और जगन्नाथ जी का दर्शन कराते हैं और खूब संकीर्तन होता खूब नृत्य होता, उसके बाद प्रसाद परोसते और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु सबको प्रसाद खिलाते। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को सबसे मिलवा भी रहे थे, नित्यानंद प्रभु से मिलवाया, अद्वैताचार्य से मिलाया और जितने भी पार्षद थे उन सबसे परीक्षा करवाया कि इनके ऊपर आप विशेष कृपा करिए ताकि ये ग्रंथों की रचना कर सकें, लीला स्थलियों का पता लगा सकें, है ना, कृष्ण भक्ति की साधना कर सकें। तो अद्वैताचार्य सनातन का अद्वैताचार्य और नित्यानंद गुरु गोस्वामी का आशीर्वाद है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु और यहाँ तक कि रूप गोस्वामी संकीर्तन भी जब करते चैतन्य महाप्रभु वो भी दूर से ही दर्शन करते, उस संकीर्तन में भाग लेने के लिए भी वो नजदीक नहीं जाते थे श्री रूप गोस्वामी। इसका मूल कारण ये था कि वो अपने आप को बहुत अधम मान रहे थे, बहुत अपने आप को गिरा मान रहे थे और इस कारण से क्या है कि उनको लगता था कि हम लोग जो है स्पर्श करने लायक नहीं है, हम छूने लायक नहीं है, इसलिए अपने आप को बहुत दूर रखते। और ये विनम्रता कोई बनावटी विनम्रता नहीं थी दिखाने के लिए, ये वास्तव में कृष्ण प्रेम का लक्षण था। ये कृष्ण प्रेम के कारण इस प्रकार की विनम्रता जाग जाती है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, त्रिणाद अभी सुने चेना तरोर अभी सही सुना अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो यानी कि जितना हम लोग भक्ति में आगे बढ़ते हैं सहनशीलता हमारी बढ़ती जाती है और विनम्रता हमारी बढ़ती जाती है। और उन गोस्वामी पाद जो स्वयं रूपमंजरी है और कृष्ण प्रेम से भरपूर है तो उनकी कितनी विनम्रता होगी इसका तो अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो विदग्ध माधव और ललित माधव ग्रंथों की रचना की थी श्री रूप गोस्वामी ने। वैराग लेने से पहले ही श्री रूप गोस्वामी ने दो ग्रंथों की रचना की थी जिसका नाम था हंसदूत और उद्धव संदेश। और वैराग लेने के बाद उन्होंने दो ग्रंथों की और रचना करना प्रारंभ किया। उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा ग्रंथ लिखूंगा जिसमें कृष्ण लीला, वृंदावन की लीला और द्वारका की लीला दोनों ही लीलाएं शामिल होगी एक ही ग्रंथ। तो ऐसा वो सोच ही रहे थे कि सत्य भामा जी ने उनको दर्शन दिया था। सत्य भामा पूर्व में सत्य भामा जी ने दर्शन दिया और उन्होंने कहा कि कृपा करके आप द्वारका की लीलाएं और वृंदावन की लीला को एक ही पुस्तक में ना लिखिए, इनको दो अलग अलग पुस्तकों में छापिए। तो फिर सत्य भामा जी के अनुरोध से और बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु वही बात हो रहा है, महाप्रभु ने भी कहा कि आप इसको एक ग्रंथ मत लिखिए, वृंदावन से कृष्ण को बाहर मत निकालिएगा। अब ग्रंथों की रचना इस तरह से करिए कि कृष्ण को वृंदावन में ही दिखाइए हमेशा। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के कहने पर उन्होंने दो ग्रंथों की रचना की। बड़ी महत्वपूर्ण रचना है ये ललित माधव और विदग्ध माधव। तो इन दो ग्रंथों की रचना की और रस तत्व के बारे में विशेष रूप से बहुत अधिक जानकारी प्राप्त हुई थी श्री रूप गोस्वामी को। महापुरुष हम जानते हैं श्री रूप गोस्वामी रस तत्व के आचार्य बताए जाते हैं, रस सिद्धांत के आचार्य और संबंध ज्ञान के आचार्य हैं श्री सनातन गोस्वामी। रूप गोस्वामी को अभिधेय तत्व का भी आचार्य बताया जाता है और प्रयोजन तत्व के आचार्य हुए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। तो इस तरह से महापुरुष से व्यक्तिगत रूप से प्रमोशन मिला था श्री रूप गोस्वामी को रस तत्व के बारे में। और साथ में महापुरुष के अतिरिक्त दो और महान वैष्णव थे जिनके सानिध्य में रहकर रूप गोस्वामी ने और दक्षता प्राप्त कर ली थी रस तत्व के विज्ञान में, और वो थे स्वरूप दामोदर और रामानंदाय। स्वरूप दामोदर जो है वो नवदीप के वासी थे और बचपन से ही महापुरुष के बहुत प्रिय मित्र भी रहे हैं। और महापुरुष ने जब संन्यास ले लिया तो उसके बाद स्वरूप दामोदर ने भी नवदीप छोड़ दिया और उन्होंने भी जाकर काशी में जाकर उन्होंने भी संन्यास ले लिया था। और उसके बाद वो जगन्नाथपुरी आ गए थे। जगन्नाथपुरी में आकर चैतन्य महाप्रभु के निजी सचिव बन गए थे और चैतन्य महाप्रभु को गंभीरा में रहते हुए चंडीदास और गीत गोविंद और इससे लिखे हुए जो गीत हैं, कविताएं हैं, विद्यावती के जो गीत हैं, ये सब कविताएं चैतन्य महाप्रभु को स्वरूप दामोदर सुनाते थे संगीत में, यानी कि गाने में भी, गायन में भी वो बड़े दक्ष थे। और कोई भी अपना ग्रंथ दिखाना चाहता था, अगर कोई अपनी कविता सुनाना चाहता था चैतन्य महाप्रभु को, तो सबसे पहले स्वरूप दामोदर को दिखाना होता। और फिर से रामानंद राय जो राजमंत्री के थे उस समय मद्रास के, वो गवर्नर थे और उसके बाद महाराज प्रताप रुद्र के राज्य में ही थे। तो रामानंद राय बहुत उच्च कोटि के वैष्णव थे। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत के लिए निकले थे तो सारंग भट्टाचार्य ने कहा था कि अब दक्षिण भारत जब जाएंगे तो वहां पर रामन राय से जरूर मिले। इस समय इस पृथ्वी में उनसे बढ़कर कोई अधिक रस शास्त्र के बारे में या रस तत्व के बारे में उनसे अधिक कोई नहीं जानता है। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रेरणा से रूप गोस्वामी को स्वरूप दामोदर और रामन राय जैसे उच्च कोटि वैष्णव का सानिध्य प्राप्त हुआ। स्वरूप दामोदर स्वयं ललिता सखी है और रामन राय विशाखा सखी है। और रूप गोस्वामी रूप मंत्री होने के नाते वो ललिता सखी के चीफ असिस्टेंट है रूप मंत्री, इसलिए स्वाभाविक था कि रूप गोस्वामी स्वरूप दामोदर के बहुत नजदीक थे और रामन राय के भी बहुत नजदीक थे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु ने बहुत प्रशंसा की थी श्री रूप गोस्वामी। तो एक दिन क्या हुआ, रथयात्रा के समय चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करते हुए, संकीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए कुछ श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए और उन्हें काव्य प्रकाश से एक श्लोक की रचना की, उच्चारण किया चैतन्य महाप्रभु। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है, इस श्लोक का इस प्रकार से है कि सखी आज मुझे वो दिन याद आ रहा है जब पहली बार मैं अपने पति से मिली थी। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। और विवाह से पहले वेटसी वृक्ष के नदी, वेटसी वृक्ष के नदी रेवती नदी के तट पर हम मिले थे, और आज वो बसंत पंचमी का वो दिन है, चैत्र का मास है, और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मालती पुष्प से सुगंध चारों ओर फैली जा रही है, और मैं और मेरे पति वो हैं, लेकिन क्या कारण है आज मुझे उतना आनंद नहीं आ रहा है जितना कि हमें पहले आता था विवाह से पहले। तो चैतन्य महाप्रभु ये काव्य प्रकाश से इस श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं, तो कोई भक्त समझ नहीं पाए, केवल स्वरूप दामोदर समझ पाए और श्री रूप गोस्वामी ने समझ लिया। तो स्वरूप दामोदर ने तो समझ लिया, लेकिन स्वरूप दामोदर ने कुछ कहा नहीं, तो श्री रूप गोस्वामी ने समझ लिया, और उसके बाद फिर श्लोक सुनने के बाद उन्होंने एक ताल का पता लिया और उसने एक और श्लोक की रचना कर दी, यानी कि बताने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु के कहने का आशय क्या है, और उन्होंने श्लोक बहुत सुंदर श्लोक लिखा। इसमें लिखा है, प्रिय सोयम कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलिता स्थाहं सराधा तदियं भूयो संगम सुखम तथा वयं तखेल मधुर मुरली पंचम दुषे मनो में कालिंदी पुलिन विपनाय प्रियति। बोले सखी, तो श्रीरूप गोस्वामी बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो कहे थे उसका क्या उद्देश्य है, क्या आशय है, उसका पीछे भाव क्या है। बोले सखी, आज हम कुरुक्षेत्र में मिले हैं, मैं वही राधा हूं और ये वही कृष्ण है। तो रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि महाप्रभु आत्मा क्या कहना चाह रहे हैं। महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जब रथ के सामने खड़े हैं तो राधा रानी के भाव में ही है, और कौन से भाव में है, जैसे कि कुरुक्षेत्र में, तो वही भाव यहाँ प्रकट कर रहे हैं। और श्री रूप गोस्वामी समझ गए हैं चैतन्य महाप्रभु के भाव, तभी तो रणतनदास ठाकुर कह रहे हैं श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापिता मेरे भूतले, कि महाप्रभु के मनोभीष्ट को जानते हैं श्री रूप गोस्वामी। तो इस तरह श्री रूप गोस्वामी समझ गए थे कि मैं वही राधा हूं और आप वही कृष्ण है, हम यहाँ कुरुक्षेत्र में आज मिल रहे हैं और वही सुख हमें वही सुख प्राप्त हो रहा है, लेकिन क्या कारण है कि यहाँ रहते हुए मेरा हृदय आतुर हो रहा है, यमुना जी के तट पर मेरा मन जा रहा है, वहां के लिए आतुर क्यों हो रहा है, वहां मैं क्यों जाना चाहते हूँ, जहां पर श्री कृष्ण जो है वंशी ध्वनि के द्वारा सबको आकर्षित करते हैं। और इस तरह से रूप गोस्वामी ने लिखकर क्या किया, उस ताल पत्ते में जो लिखा था उन्होंने एक छज्जे के ऊपर रख दिया और स्नान करने चले गए। और उस समय चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर ये सब गौर पार्षद वापस आए और देखा कि उस छज्जे में एक ताल का पत्ता है और उसमें कुछ श्लोक लिखा हुआ है। तो महाप्रभु ने कहा ये क्या है, इसमें तो कुछ श्लोक लिखा है। श्लोक उठा के देखा, वो पत्ता उठा के देखा, उस श्लोक को जब पढ़ा चैतन्य महाप्रभु सोचा अरे ये किसने लिखा है। तो स्वरूप दामोदर ने कहा ये रूप गोस्वामी ने लिखा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने मुस्कुराते हुए बहुत हल्के से रूप गोस्वामी को चाटा मारा, तुमने कैसे समझ लिया मेरे मन में क्या है, मेरी भावना को तुमने कैसे समझ लिया, मैंने तो किसी को बताया नहीं। तो स्वरूप दामोदर ने कहा कि इसमें कौन सा बड़ा आश्चर्य है, रूप गोस्वामी को तो आपका विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हाँ मेरा आशीर्वाद निश्चित रूप से है। और इस तरह से चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी का आलिंगन किया और उन्होंने कहा स्वरूप दामोदर को कि आप ही इनको ब्रज रस के जो अंतर्गत रहस्य हैं उस सिद्धांतों को अच्छी तरह से समझाइए रूप गोस्वामी को। तो रूप गोस्वामी इन ग्रंथों की रचना कर रहे थे, विदग्ध माधव और ललित माधव की रचना कर रहे थे, और सभी भक्तों की इच्छा थी कि ग्रंथ जल्द से जल्द तैयार हो और ग्रंथों को हम भी पढ़ें। तो एक दिन जो है चैतन्य महाप्रभु ने इस ग्रंथ में जो लिखे कुछ श्लोकों को देखा, और क्या देखा, चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक देखा, तुंडे तांडवनी रति मिथुनते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड़ कड़म्बनी घटयते कर्णामुदे व्यस्पृहा चेत प्रांगण संगनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम नो जाने जनिता क्रियत विरमित कृष्णेति वर्णद्वयी। तो रूप गोस्वामी लिखते हैं कि ये कृष्ण का नाम अमृत से भरा हुआ है, और जब जब मैं कृष्ण का नाम अपने मुख से लेता हूं तो मैं ये आशा करता हूं कि लाखों लाखों मुखों मेरे, और जब भी मैं इस कर्णों के द्वारा कृष्ण का नाम सुनता हूं तो मैं ये आशा करता हूं कि मेरे लाखों लाखों कर्ण हों, और ये मेरे नित्य संगी के रूप में जब ये कृष्ण का नाम मेरे मन में प्रकट हो जाता है तो ये मेरे इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। रूप गोस्वामी लिख रहे हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। और इस तरह से जब रूप गोस्वामी ने लिख दिया तो महाप्रभु बहुत प्रेरित हुए, महाप्रभु बड़े खुश हुए। महाप्रभु ने दिखाया हरिदास ठाकुर को, हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मैंने तो कृष्ण नाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, नाम की महिमा के बारे में बहुत शास्त्रों में बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन ऐसी व्याख्या तो आज तक मैंने नहीं पढ़ी है जैसे कि श्री रूप गोस्वामी ने लिखा है इधर। तो महाप्रभु ने रूप गोस्वामी का आलिंगन किया, हरिदास ठाकुर का भी आलिंगन किया, और उसके बाद फिर लेकिन चैतन्य महाप्रभु का भी पेट भरा नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं और सबको दिखाऊंगा, ये रूप गोस्वामी के इस लेख को सबको दिखाने लगे, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय और जितने भी वहाँ पार्षद थे सबको दिखाने लगे, सबको पढ़ के सुनाने लगे। और उसके बाद रामानंद राय ने कहा कि वास्तव में ये कवित नहीं है, ये तो अमृत की धारा है, और इसका पाठ करते ही क्या होता है, हमारा चित्त जो है वो गदगद हो जाता है। तो रामानंद राय इस तरह से प्रशंसा की, उनकी रचना की प्रशंसा की। तो रूप गोस्वामी इस तरह से नीलाचल में लगभग 10 महीने के लिए रहे, और अब बहुत दक्ष हो चुके थे रूप गोस्वामी कि वो ग्रंथों की रचना कर पाते। उनको चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका था और सभी गौर पार्षद का पार्षदों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और एक दिन चैतन्य रूप गोस्वामी महाप्रभु से आशीर्वाद लेकर निकल पड़े वृंदावन की ओर। महाप्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया, उनका आलिंगन किया और महाप्रभु को आदेश दिया कि आप जाइए वृंदावन, जाइए और रस शास्त्र की अवरचना के लिए लीला थरियों का पता लगाइए और कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करिए और रस भक्ति के बारे में भी व्याख्या करिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जल्द ही मैं वृंदावन आऊंगा और देखूंगा कि क्या आपने क्या किया है। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से यानी गोस्वामियों की कृपा से आज वृंदावन की सारी जो लुप्त लीला स्थलियां हैं इन सबका आज हम दर्शन कर पा रहे हैं। और विशेष रूप से प्रभुपाद जी को विशेष रूप से धन्यवाद है जिन्होंने वास्तव में गोस्वामियों का ही कार्य किया है। इसलिए प्रभुपाद जब किसी मंदिर में जाते हैं तो प्रभुपाद कहते हैं कि आई एम लाइक द 6 गोस्वामी ऑफ वृंदावन। प्रभुपाद कहते हैं कि आप लोग तो यही मंदिर में रहते हो हमेशा, मैं तो प्रत्येक मंदिर में 3 दिन से ज्यादा नहीं रहता हूं। तो प्रभुपाद ने कहा आई एम लाइक द 6 गोस्वामी। तो इस तरह से रूप गोस्वामी वृंदावन वापस आ गए 1519 में, और जब वृंदावन वापस आ रहे थे तो सनातन गोस्वामी उसी समय नीलाचल की तरफ गए थे, यानी कि सनातन गोस्वामी को रस्ते में मिल नहीं पाए क्योंकि सनातन गोस्वामी झारखंड के जंगलों से निकल रहे थे और रूप गोस्वामी विष्णुपुर के रस्ते से, और विष्णुपुर के रस्ते से उनके विष्णुपुर के और से निकले थे, यानी कि राजपथ से निकले थे विष्णुपुर होते हुए। क्योंकि सनातन गोस्वामी जब जगन्नाथपुरी पहुंचे थे तो रूप गोस्वामी 8 या 10 दिन पहले ही उन्होंने नीलाचल छोड़ा था वृंदावन की ओर निकलने से, लेकिन सनातन गोस्वामी वहां पर ज्यादा समय तक रहे नहीं और उनको भी वापस भेज दिया गया होली के बाद, यानी कि गौर पूर्णिमा के बाद। तो होली के बाद जो है सनातन गोस्वामी भी निकल आए थे, और उसके बाद इतना ऊंचा पद त्यागने के बाद, इतना बड़ा साम्राज्य त्यागने के बाद पहली बार सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी वृंदावन धाम में आके मिले थे एक साथ, और बहुत बड़ा कार्य था उनके पास। भक्ति शास्त्रों की तो रचना करनी ही थी, विग्रह की स्थापना तो करनी थी, लीला स्थलियों को तो पता लगाना ही था, लेकिन साथ में आचरण के द्वारा भी, तपस्या के द्वारा, वैराग्य के द्वारा उनको एक बहुत बड़ा उदाहरण की स्थापना करना था पूरे वैष्णव समाज के लिए। इसे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पूरे वैष्णव समाज में प्रचलित हो गए और सभी वैष्णवों को बहुत विशेष आदर देते थे, और दूर दूर से वैष्णव आते थे रूप गोस्वामी के, सनातन गोस्वामी का दर्शन करने के लिए। और हम जानते हैं कि सनातन गोस्वामी जिस तरह से ब्रजवासियों को बहुत प्रिय थे, इस तरह से रूप गोस्वामी भी बहुत प्रिय थे ब्रजवासियों को। तो सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था कि जब आप ब्रज जाए कि मेरे कई जो पार्षद है या कई मेरे भक्त हैं वृंदावन आके रहना चाहेंगे और वहां आकर वो लोग भजन करना चाहेंगे, वैराग्य जीवन बिताना चाहेंगे, तो मेरी इच्छा ये है सनातन कि जब वो आए तो उनका ध्यान रखना, उनका ख्याल रखना, उनकी ठीक से सेवा करना, उनको प्रसाद की कोई चिंता ना हो, उनको रहने की कोई चिंता ना हो। तो सनातन गोस्वामी बहुत गंभीर व्यक्ति थे, ग्रेव, एकदम ग्रेव थे, और लेकिन कर्मपटु नहीं थे, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स में इतने एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन रूप गोस्वामी हर एरिया में एक्सपर्ट थे, ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट में भी एक्सपर्ट। कई बार होता है भक्तों में देखा जाता है कुछ लोग मैनेजमेंट में एक्सपर्ट होता है, कुछ लोग प्रीचिंग में एक्सपर्ट होता है, तो रूप गोस्वामी अफकोर्स प्रीचिंग में थे एक्सपर्ट, साथ में ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत अच्छे थे। तो हालांकि चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को ये कार्यभार दिया था ऑर्गेनाइजेशन का, मैनेजमेंट का और भक्तों का ध्यान रखना, लेकिन सनातन गोस्वामी सॉलिटरी रिफाइनमेंट बहुत पसंद करते थे और बड़े ग्रेव थे, वो गंभीर थे। लेकिन सनातन गोस्वामी ने जितना हो सका उन्होंने प्रयास किया, लेकिन अधिकांश कार्य जो है रूप गोस्वामी को करना पड़ता। तो रूप गोस्वामी ही वास्तव में ध्यान रखते थे भक्तों का, जो भी भक्त वृंदावन आते थे भजन करने के लिए, निर्जन भजन करने के लिए, तो उन सबकी सहायता करते थे श्री रूप गोस्वामी। और उसके बाद कुछ समय के बाद ही, रूप सनातन गोस्वामी के आने के बाद ही, गोपाल भट्ट गोस्वामी भी वहां वृंदावन पहुंच गए थे। महाप्रभु का प्रादुर्भाव हो चुका था और उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी भी वृंदावन आ गए थे, और बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी जानते हैं कि वो भी राधापुर में जाके रहने लगे थे। और उसके बाद कई और गोस्वामी भी आ गए थे और गोस्वामी भी आए, इस तरह से वृंदावन की लीला स्थलियों का पता लगाया गया और कई विग्रहों की स्थापना की गई श्री धाम वृंदावन। गोविंद देव जी का प्राकट्य, गोविंद देव जी का विग्रह कैसे प्राप्त हुआ, ये बहुत सुंदर कथा है और ऐसे कई ग्रंथ हैं जिसमें उनका वर्णन मिलता है। विशेष रूप से नरहरि चतुर्थी ठाकुर ने भक्ति रत्नाकर में और एक राधाकृष्ण गोस्वामी हुए जिन्होंने साधन दीपिका में इस घटना का वर्णन किया है। तो महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को कहा था कि लीला स्थलियों का पता लगाएं और साथ में विग्रह का भी पता लगाएं, विशेष रूप से गोविंद देव जी का, क्योंकि गोविंद देव जी का विग्रह जो है महाराज भजननाव के द्वारा स्थापित था आज से 5000 वर्ष पूर्व। महाराज भजननाव ने 4 देव स्थापित किए थे, हरिदेव, बलदेव और गोविंद देव, और 2 नाथ स्थापित किए थे, श्रीनाथ और गोपीनाथ, और उसके बाद 2 गोपाल स्थापित किए थे, साक्षी गोपाल और मदन गोपाल। तो ये महाराज भजननाव के द्वारा स्थापित है 5000 वर्ष पूर्व, लेकिन किसी कारणवश अप्रकट हो गए थे, किसी को मिल नहीं रहे थे, किसी को दर्शन नहीं प्राप्त हो रहा था। तो द्वादश वनों में रूप गोस्वामी भटक रहे थे कि कहाँ हैं गोविंद देव जी, कहाँ हैं गोविंद देव जी, बहुत चिंता कर रहे थे। शास्त्रों में उन्होंने पढ़ा था कि गोविंद देव जी योगपीठ में उनका जो है स्थापना की थी महाराज वज्रनाथ में योगपीठ में, लेकिन योगपीठ वृंदावन में कहाँ है दिखाई नहीं दे रहा था। ये सारी लीला स्थलियां लुप्त हो गई थी। रूप गोस्वामी सोचने लगे कि एक इंसान क्या भगवान की तलाश करेगा, अरे सूर्य तो अपने आप ही प्रकट होता है, रात्रि को आप टॉर्च लाइट लेकर निकलो सूर्य थोड़ा प्रकट हो जाएगा, सूर्य तो अपने आप प्रकट होगा, है ना। तो मैं इस तरह से भटक रहा हूँ, जब गोविंद देवी चाहेंगे वो स्वयं दर्शन देंगे। तो इस तरह से हा गोविंद हा गोविंद करके रूप गोस्वामी चिल्लाते। तो रूप गोस्वामी बहुत चिंतित थे गोविंद देव जी का दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो एक बार एक ब्रजवासी लड़का आया, ब्रजवासी ने कहा कि क्यों आप रो रहे हो। तो रूप गोस्वामी ने बताया कि चिंता का कारण क्या है, उन्होंने कहा कि योगपीठ की तलाश में आप, हाँ गोविंद देव जी अगर आप योगपीठ की तलाश करना चाहते हैं तो चलिए, वहां पर गोमा टीला है योगपीठ में, उस गोमा टीला में प्रत्येक दिन एक गाय आती है और दूध दे जाती है, वहां एक गड्ढा है उस गड्ढे में दूध दे जाती है, तो वहीं पे जो है गोविंद देव जी विराजमान है उस गड्ढे में। तो ब्रजवासी ऐसा बोला और चला गया और वहां से अदृश्य हो गया। तो रूप गोस्वामी को लगा अरे कौन था लड़का, आया मुझे बताया और चला गया, कहाँ चला गया वो। तब रूप गोस्वामी को लगा लगता साक्षात गोविंद देव जी आए थे मुझे बताने के लिए। तो इस तरह से उस समय के लिए मूर्छित हो गए, और जब होश में आया तो रूप गोस्वामी निकल पड़े ब्रजवासियों को लेकर, गोमा टीला पहुंचे, वो स्थान जहाँ पे वो गोविंद देव जी का विग्रह प्राप्त हुआ, एक बार हमें भी मौका मिला था वो स्थान को देखने का, हालांकि वो बंद ही रहता है हमेशा। पता नहीं उसने एक पुजारी आया और कहता है कि चलो मैं आपको दर्शन कराता हूँ, और भी 4-5 लोग थे। तो फिर हम लोग नीचे गए, सीढ़ियों से उतरकर बेसमेंट में जाकर उन्हें दर्शन कराया, ये देखो ये है जगह जहाँ गोविंद देव जी मिले रूप गोस्वामी, वो चिन्ह भी है, वो स्थान का चिन्ह भी है जहाँ पर गोविंद देव जी प्राप्त हुए थे रूप गोस्वामी। तो इस तरह से सब लोग गोविंद देव जी की जाए, गोविंद देव जी की जाए। तो इस तरह से सब भक्त लोग चिल्लाने लगे, और रूप गोस्वामी ने जो शास्त्रों के अनुसार ये जो पढ़ा था कि गोविंद देव जी योगपीठ में हैं और गोमा टीला वो स्थान है जो कि महाराजा वज्रनाभ के द्वारा स्थापित किया गया था योगपीठ में, गोविंद देव जी को प्राप्त हुए, और रूप गोस्वामी ने ये संदेशा भिजवाया था चैतन्य महाप्रभु उस समय थे। चैतन्य महाप्रभु संदेश भेजा था कि गोविंद देव जी उनको विग्रह प्राप्त हो चुके हैं और महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ये खबर सबको बताई कि गोविंद देव जी का विग्रह प्राप्त हो गया ऋषि रूप गोस्वामी को। और उसके बाद तुरंत ही महाप्रभु ने काशीश्वर पंडित को कहा कि आप वृंदावन जाइए और वहां जाकर गोविंद देव जी की सेवा करिए। तो काशीश्वर पंडित ने कहा कि मैं आपके अलावा कैसे रख सकता हूँ, मैं बगैर आपके बगैर रह ही नहीं सकता, जीवित ही नहीं रह सकता, ये संभव ही नहीं है कि मैं आपको छोड़ के चले जाऊं। तो काशीश्वर पंडित रोने लगे बहुत, बोलते मैं आपके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ, ये संभव ही नहीं है कि मैं आपको छोड़ के वृंदावन चले जाऊं। तो महाप्रभु ने कहा ऐसा ना कहो, देखो मुझमें और गोविंद देव में कोई भेद नहीं है, आप विश्वास नहीं करते हो ना, ठीक है। तो महाप्रभु ने उसी समय जो है गौर गोविंद का विग्रह प्रकट कर दिया जो कि बिल्कुल गोल्डन है। आज भी जयपुर में जहाँ गोविंद देव जी हैं उस विग्रह के साथ एक छोटा सा विग्रह है लेफ्ट साइड में, हमारी तरफ से जब देखते हैं तो लेफ्ट साइड में वहाँ छोटा सा विग्रह है, वही गौर गोविंद जी है। काशीश्वर पंडित को श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया था और चैतन्य महाप्रभु क्या दिखाया कि देखो अब ये गौर गोविंद है और मैं है, मैं हूँ, हम दोनों बैठकर एक साथ जो है भोग स्वीकार करें, तब तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा ना कि मुझमें और कोई भेद नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु गौर गोविंद विग्रह के साथ बैठकर उन्होंने भोजन स्वीकार किया। तो इस तरह से काशीश्वर पंडित को इस बात पर विश्वास हो गया कि ये गौर गोविंद विग्रह जो है चैतन्य महाप्रभु का भिन्न है। तो काशीश्वर पंडित गौर गोविंद विग्रह को लेके गए और गोविंद देव जी के विग्रह के साथ स्थापित किया और महाप्रभु की सेवा पूजा की। श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसार सूत्रों में लिख रहे हैं स्वेराज भंगी त्रया परिषद साखी विस्तीर्ण दृष्टि वंशी नयताधर किशल्याम उज्ज्वलम चंद्र केणा गोविंदाख्यम हरितनुमिता केश तीर्थो वकंटे मा प्रेम शिष्टा तव यदि सके बंधु संगीत तिरंगा। प्रिय मित्र, अगर आप अपने मित्रों के साथ रिश्तेदारों के साथ मौज मस्ती करना चाहते हो, क्रीड़ा करना चाहते हो, हंसी मजाक करना चाहते हो तो केशी तीर्थ में जो गोविंद देव जी हैं केशी घाट के निकट, जो केशी तीर्थ के निकट गोविंद देव जी का विग्रह है या गोविंद देव है उनका दर्शन मत करो। वहां पे मुस्कुराते हुए त्रिभंग रूप में खड़े हैं, मोर मुकुट को धारण किया हुआ है, वंशी बजा रहे हैं। उनको आपने कहीं देख लिया तो आप अपने सगे संबंधियों को रिश्तेदारों को भूल जाओगे, बहुत सावधान मत करना दर्शन उनका। तो इस तरह रूप गोस्वामी बता रहे हैं। तो पांचांग भक्ति का वर्णन करते हुए वो बता रहे हैं, जब विग्रह के बारे में बता रहे हैं श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसाम सुंदर ये बता रहे हैं कि गोविंद देव जी का विग्रह का दर्शन कोई कर लेता है तो उसका आकर्षण कृष्ण के प्रति बढ़ने लगता है, क्योंकि धरातल पर गोलोक वृंदावन से तीन मूल विग्रह प्रकट हुए हैं, एक है मदन मोहन जी, एक गोविंद देव जी, एक गोपीनाथ जी। तो गोविंद देव जी का विग्रह का दर्शन आज भी जयपुर में प्राप्त होता है। तो बाद में जानते हैं कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने गोविंद देव जी के लिए मंदिर बनवाया था और स्वयं राजा मान सिंह ने इसके लिए लाल पत्थर दिए थे और इस मंदिर का सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ। गोविंद देव जी का विग्रह काफी समय तक अकेले थे, यानी राधा रानी साथ में नहीं। तो भक्ति रत्नाकर में इस तरह से वर्णन आता है, पुरुषोत्तम जाना जो महाराज प्रताप रुद्र के सुपुत्र थे और बहुत उच्च कोटि के वैष्णव थे, उन्होंने दो विग्रह भिजवाए थे वृंदावन में, एक गोविंद देव जी के लिए और एक मदन मोहन जी के लिए, यानी कि एक राधा रानी गोविंद देव जी के लिए, एक राधा रानी मदन मोहन जी के लिए भिजवाए थे। तो जब वो वृंदावन पहुंच गए तो मदन मोहन जी के पुजारी ने पुजारी को सपने में आके कहा, मदन मोहन जी ने पुजारी को सपने में आके कहा कि पुरुषोत्तम जाना ने दो विग्रह भेजे हैं, एक गोविंद देव जी के लिए एक मेरे लिए, लेकिन दोनों विग्रह को यहीं पे स्थापित करना और जो छोटे विग्रह हैं वो मेरे पास स्थापित करना बाईं तरफ और जो बड़े विग्रह हैं ललिता जी हैं वो उनको दाईं तरफ स्थापित करना। तो पुरुषोत्तम जाना को पता चला कि मदन मोहन जी ने तो अपने पास ही रोक लिया है उनको, तो गोविंद देव जी तो अभी भी बैठे खाली, उनके बाद अभी भी राधा रानी नहीं। तो पुरुषोत्तम जाना चले कि क्या करो हमें, तो उनको सपने में राधा रानी दर्शन देते, बोलते मैं चक्रबेड़ा में हूं अभी, वहां उड़ीसा में साथ चक्रबेड़ा, तो चक्रबेड़ा में हूं मैं वहां पे, ये लोग मुझे सोच रहे हैं कि मैं लक्ष्मी हूं, मेरी पूजा लक्ष्मी जी के रूप में कर रहे हैं सब, मैं तो राधा हूं और मेरे स्वामी आ चुके हैं वृंदावन, मुझे आप वहां पहुंचा दीजिए, मेरी ये प्रार्थना है आपसे। तो पुरुषोत्तम जाना ने क्या किया, फिर चक्रबेड़ा गए और लक्ष्मी जी का विग्रह, जो लोग सोचते थे लक्ष्मी जी का विग्रह है, उसको वहां से उठाया और भिजवाया वृंदावन। तो इस तरह से गोविंद देव जी के साथ भी राधारानी के प्रग्रह स्थापित हुआ, ऐसा वर्णन भक्ति रत्नाकर में आता है। तो 1590 में राजा मान सिंह ने लाल पत्थर दिए थे और गोविंद देव जी का बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण किया गया था, 7 मंजिला था ये ऊंचा। और उन दिनों जो है राजा अकबर जो थे ये लाल पत्थर का उपयोग करते थे और ये पूर्वी राजस्थान से लाया जाता था, अपने किलों को बनवाने के लिए रेड स्टोन का उपयोग किया जाता था। तो मंदिरों के लिए तो लाल पत्थर नहीं दिए जाते थे, बहुत महंगा भी होता था, लेकिन राजा मान सिंह जो है इतने उदार दिल के थे, उन्होंने वैष्णवों की सेवा की। बाद में हम जानते हैं बहुत समय के बाद, क्योंकि मान सिंह जो है 1614 में उनकी मृत्यु हो चुकी थी और उसके बाद फिर औरंगजेब भी आया था, औरंगजेब ने आके जो है कई मंदिरों को तोड़ा भी था, मदन मोहन जी का मंदिर तोड़ा था, गोविंद देव जी का मंदिर तोड़ा था, गोपीनाथ जी का मंदिर तोड़ा था, बहुत सारे मंदिर तोड़े गए थे वृंदावन में। तो उस समय जो है ये जयपुर से वृंदावन से जयपुर लाए गए थे गोविंद देव जी। और कुछ समय के बाद महाराज जय सिंह ने जयपुर शहर की रचना की थी। ये जयपुर का जो शहर है ये बनाया था वास्तव में महाराजा जय सिंह के द्वारा, और उन्होंने कहा कि वास्तव में मैं यहाँ का राजा नहीं हूँ। उन्होंने एक महल भी बनाया था, चंद्र महल, बिल्कुल मंदिर के सामने, यानी बिल्कुल गोविंद देव जी के सामने। उस महल से प्रत्येक दिन आके महाराजा जय सिंह गोविंद देव जी का दर्शन कर, आज भी वो महल का दर्शन आप कर सकते हैं गोविंद देव जी के सामने। तो महाराज जय सिंह ने कहा, महाराजा दी राज गोविंद देव जी ये राजा है और मैं दीवान हूँ, यानी कि दीवान मतलब प्राइम मिनिस्टर, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, किंग तो कौन है, गोविंद देव जी हैं। आज भी जयपुर के लोग जो मानते हैं गोविंद देव जी को राजा मानते हैं, यानी कि उस समय जो उनकी जो सोने की मुद्रा होती थी गोल्ड कॉइन्स में भी ये लिखा हुआ था, उस गोल्ड कॉइन में लिखा हुआ था महाराजा दी राज श्री गोविंद देव दीवान महाराज जय सिंह, उस गोल्ड कॉइन में लिखा हुआ, यानी गोविंद देव जी यहाँ के राजा है, मैं राजा नहीं। तो इस तरह से महाराजा जय सिंह जो है वैष्णव थे और गोविंद देव जी के अनन्य भक्त थे। और बाद में 1749-1748 के बीच में मोहम्मद शाह जो उस समय राज्य कर रहे थे दिल्ली में, और उन दिनों वृंदावन में कई भक्तों ने क्या किया था, गोविंद देव जी का एक प्रतिभू विग्रह स्थापित किया था और जो मंदिर बनवाया था मान सिंह ने पत्थर दिए थे जिस मंदिर के लिए, उस मंदिर के नजदीक ही। और 1819 में एक नंद कुमार बसु नाम के एक भक्त थे जिन्होंने एक और मंदिर बनाया था उसी मंदिर के बिल्कुल साथ में उत्तरी पश्चिम दिशा में, जहां पे वो गोविंद देव जी का प्रतिभू विग्रह का दर्शन आज भी हम प्राप्त कर सकते हैं वृंदावन धाम। तो रूप गोस्वामी बहुत विनम्र स्वभाव के थे, इतनी अधिक विनम्रता थी उनकी कि उनकी विनम्रता देखकर पिघल जाते थे लोग, और कई लोग लेकिन बहुत द्वेष करते थे। कई बड़े बड़े विद्वान आते थे, वो बोलते थे हम आपके साथ शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, लेकिन रूप गोस्वामी बोलते थे कि ये तो समय की बर्बादी होगी। सनातन गोस्वामी के साथ ये चर्चा करते थे, भक्तों को शोभा नहीं देता है कि वाद विवाद में लगे, अच्छा तो ये है कि हम लोग विजय पत्र को दे देते हैं, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है शास्त्रार्थ करके। तो एक बार ऐसे रूपनारायण सरस्वती आए जो कि दिग्विजय थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, और उन्हें भारतवर्ष में सबको परास्त कर दिया था। तो रूपनारायण सरस्वती जब वृंदावन पहुंचे तो उनको पता चला कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी यहाँ के प्रमुख आचार्य हैं, और अगर मैं रूप गोस्वामी को परास्त कर लूंगा तो फिर और कोई मेरे सामने आएगा ही नहीं शास्त्रार्थ करने के बाद। तो रूपनारायण सरस्वती रूप गोस्वामी के पास पहुंचे, और उस समय जीव गोस्वामी बहुत छोटे थे, जीव गोस्वामी तभी वृंदावन पहुंचे थे और रूप गोस्वामी की व्यक्तिगत सेवा करते थे जीव गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी से जब आए व्यक्ति मिलने तो उसने कहा कि मैं चाहता हूं आप मुझसे शास्त्रार्थ करें। रूप गोस्वामी ने कहा कि क्या आप चाहते हैं, बोलते हैं आप शास्त्रार्थ करिए मेरे साथ, नहीं तो आप विजय पत्र लिखे दीजिए कि आप हार चुके हैं। तो सनातन गोस्वामी से रूप गोस्वामी ने कहा ठीक है हम ऐसा ही करते हैं। उन्होंने विजय पत्र में लिख के दे दिया कि हम दोनों भाई रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रूप नारायण सरस्वती के द्वारा परास्त कर दिए गए हैं, ऐसा उन्होंने विजय पत्र लिख के दे दिया, और रूप नारायण सरस्वती ही वास्तव में दिग्विजय है। तो जी गोस्वामी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि रूप नारायण सरस्वती आके इस तरह से व्यवहार किया उसने, और रूप गोस्वामी पाजी जो मेरे गुरुतुल्य हैं उन्होंने जो है उनको विजय पत्र भी दे दिया, ये तो मतलब अनादर है हमारे गुरुदेव के लिए। जीव गोस्वामी ने कहा अच्छा मैं सुनाता हूँ। तो जीव गोस्वामी ने ऐसा शास्त्रार्थ किया, रूप नारायण सरस्वती दोबारा कभी वृंदावन नहीं आया, बहुत बुरी तरह से हरा दिया जीव गोस्वामी ने, बहुत बहुत बुरी तरह से। तो ऐसे में तो रूप गोस्वामी ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि ये तो शिष्य का कर्तव्य बनता है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक बार जब रूप गोस्वामी एक ग्रंथ की रचना कर रहे थे जिसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु जब ग्रंथ की रचना कर रहे थे तो उस समय श्रीपाद वल्लभाचार्य वहां पर आए। श्रीपाद वल्लभाचार्य वल्लभ समुदाय के बहुत ही वरिष्ठ वैष्णव आचार्य, जो कि वास्तव में चैतन्य महाप्रभु से भी उम्र में बड़े थे, चैतन्य महाप्रभु से बहुत पहले के थे, और फिर रूप गोस्वामी से तो कितने बड़े होंगे, और जी गोस्वामी तो उनके पोते के बराबर है। तो श्रीपाद वल्लभाचार्य ने कहा कि आपने वो श्लोक लिखा था, उन्होंने इस तरह से भक्ति रसाम सुंदर में श्लोक है, यही श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को सुनाया था प्रयाग में, और रूप गोस्वामी ने ये श्लोक दोबारा लिखा, मतलब लिखा भक्ति रसाम सुंदर ग्रंथ में है ये श्लोक, मुक्ति मुक्ति स्प्रिहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस यात्रा कथम भ्युदयो भवे। भौतिक जगत को भोगने की इच्छा तथा भौतिक बंधन से मुक्त होने की इच्छा, ये दो पिशाचनियां हैं जो भूत प्रेतों की तरह मंडराती रहती हैं। जब तक ये पिशाचनियां हृदय में रहती है तब तक भला दिव्य आनंद हो कैसे हो सकता है, जब तक ये दोनों डाइने हृदय में रहती हैं तब तक भक्ति का दिव्य आनंद अनुभव करने की संभावना नहीं रहती। तो क्या हुआ कि श्रीपाद वल्लभाचार्य ने कहा कि श्रीपाद एक बात कहूं, ये श्लोक तो बड़ा अच्छा है लेकिन आपने यहां मुक्ति मुक्ति को पिशाची बता दिया है, ये कैसे संभव हो सकता है कि मुक्ति मुक्ति पिशाची है। तो ऐसा कहकर श्रीपाल वल्लभाचार्य चले गए स्नान करने यमुना जी। तो स्नान करके जब वो लौट रहे तो श्रीलजीव गोस्वामी उनको मिले। श्रीलजीव गोस्वामी ने कहा कि श्रीपाल मैं कुछ प्रार्थना लेकर आया हूं। तो श्रीलजीव गोस्वामी तो उम्र में बहुत छोटे थे, समझ लीजिए होंगे 19-20 साल के, और श्रीपाल वल्लभाचार्य तो लेट 60s में होंगे, तो कितने बड़े हैं उसे देखिए, और बहुत वरिष्ठ वैष्णव भी हैं, वल्लभ संप्रदाय के आचार्य हैं। तो श्रील जी गोस्वामी बोलते हैं कि मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे गुरुदेव श्रीपाद जी ने भक्ति मुक्ति को पिशाचनी नहीं कहा है। बोले क्या, तो क्या कहा है, मैंने तो यही पढ़ा था, नहीं श्रीपाद उन्होंने तो भक्ति मुक्ति को पिशाचनी नहीं कहा है, उन्होंने तो भक्ति मुक्ति की जो स्प्रिया है उसको पिशाचनी कहा है। तो श्रीपाद वल्लभाचार्य बोले अरे ये बात तो बिल्कुल सही है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, उन्होंने तो ऐसे ही लिखा है ना, मुक्ति मुक्ति स्प्रिहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, उन्होंने मुक्ति मुक्ति की इच्छा को पिशाची बोला है। अरे वैसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, चलो चलो जी साथ में चलता हूं मैं, अभी जाके क्षमा मांगता हूं। श्रीपाद वल्लभाचार्य बहुत विनम्र स्वभाव के थे, वैष्णव है, तो उन्होंने कहा श्रीपाद मुझसे गलती हो गई, आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, आप बहुत सुंदर ग्रंथ की रचना कर रहे हैं और श्लोक की रचना भी बिल्कुल आपने सटीक की है, मुझे क्षमा करिए, आपका ये शिष्य बड़ा अनुहोनार है, आपका ये शिष्य बड़ा होनहार है, बहुत बड़ा विद्वान है, और मुझे तो पूरा विश्वास है कि भविष्य में चलकर पूरे गौड़िया वैष्णव समाज का ये आचार्य बनेगा। सुशील रघु गोस्वामी ने कहा ठीक। तो श्रीपाद वल्लभाचार्य चले गए कहकर, मैंने कहा जी आपने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि श्रीपाद मुझे सहा नहीं गया, क्योंकि मुझे लगा कि ये तो अच्छी बात नहीं है, आपने तो कोई गलती की नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं बताऊं। तो जी गोस्वामी को कहते हैं कि जानते हो श्रीपाद वल्लभाचार्य इतने उच्च कोटि के वैष्णव आचार्य हैं और मुझसे भी बहुत वरिष्ठ हैं, और चैतन्य महाप्रभु के समकालीन रहे हैं, यानी उनसे भी पहले रहे, और तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने शिष्टाचार का भंग किया, मर्यादा का भंग किया, और तुम अपने से वरिष्ठ वैष्णव को शिक्षा देने लग गए, तुम्हारे अंदर बड़ा अहंकार है, तुम्हारे हृदय में इतनी क्रोध है, इतना क्रोध इतना अहंकार है, तुम्हें तो वृंदावन में रहने का कोई अधिकार नहीं, जाओ मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता। रूप गोस्वामी ने बहुत गुस्से में कहा जाओ यहां से निकल जाओ वृंदावन से, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता। श्रीलजी गोस्वामी को इतना बड़ा झटका लगा, उनको लगा कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है रूप गोस्वामी के चरणों में। श्रीलजी गोस्वामी वहां से निकल पड़े और नंद घाट में एक गुफा में जाके रहने लगे, वहां मगरमच्छ भी आता था। शिल जी को स्वामी अपने आप को इतना कोसने लगे, उन्होंने कहा कि मैंने इतना बड़ा गुरु के प्रति अपराध कर दिया, मैंने उनको दुखी किया, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, मुझे अभी प्राण त्याग नहीं देने चाहिए। जी गोस्वामी ने मधुकरी करना भी बंद कर दिया, उनके शरीर में केवल हड्डियां रह गई थी। सनातन गोस्वामी इसी समय वहां पर ब्रज में जाते थे, परिक्रमा भी करते थे और कई ब्रजवासियों के घर भी जाते थे। सनातन गोस्वामी एक ब्रजवासी के घर पे गए तो एक माँ स्त्री बोली कि बाबा आप तो मधुकरी कर लेते हो, लेकिन एक ऐसा बाबा भी है जो नंद घाट के पास रह रहा है, वो तो मधुकरी भी नहीं करता है, अशक वृत्ति का है, कभी उससे जाके तो मिलो। कहा अच्छा। सनातन गोस्वामी समझ गए ये शायद जी भी होगा जो इतने दिन से नहीं दिखाई पड़ रहा है, देखता हूँ जाकर। जी गोस्वामी को जाके मिले तो देखा जी गोस्वामी वहां पर अपने से लेटे हुए हैं। तो कहा ये क्या हालत बना रखी है जी, उठो चलो मेरे साथ। कहा नहीं नहीं मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मैंने अपने गुरु के चरणों में अपराध किया है, मैं नहीं जाऊंगा। कहा नहीं नहीं मैं बात करूंगा स्वरूप से, ऐसे कैसे आपको निष्कासित कर दिया। तो जी गोस्वामी को जबरदस्ती ले जाते हो, उठा के ले जाते हैं, और जब पहुंचते हैं तो लड़खड़ा रहे होते हैं, वो चल भी नहीं पाते ठीक से। और सनातन उस समय शिल रूप गोस्वामी जो है कथा कर रहे होते हैं, और कथा में बहुत सारे वैष्णव आए हुए भक्त लोग बैठे हैं। शिल रूप गोस्वामी बता रहे हैं नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन यही छाड़ी धर्म नहीं सुन सनातन। महापुरुष सनातन गोस्वामी को कहा धर्म के तीन श्रेष्ठ स्तंभ है, नाम में रुचि जीव के प्रति दया और वैष्णव की सेवा, और इसके अतिरिक्त इसको छोड़ के और कोई धर्म नहीं है। तो जब कथा समाप्त हुई सनातन गोस्वामी ने कहा कि कथा तो बड़ी अच्छी कही आपने, लेकिन आपकी दया आप दया आपके अपनी जीव के प्रति कहाँ गई। आप कहते हैं जीव की दया, जीव दया के बारे में बात की आपने, लेकिन अपने जीव के प्रति आपकी कोई दया नहीं है, आपका हृदय जो है दया से वंचित हो गया है, अपने जीव के लिए कोई दया नहीं है। वो कहाँ है जीव, कहाँ है जीव? रूप गोस्वामी बोले मैं तो इतने दिन से उसका इंतजार कर रहा था, तभी तो मैं एक ग्रंथ की रचना नहीं कर पा रहा हूँ, भक्ति रसाम शुद्ध ग्रंथ की रचना रुक गई थी। तो श्री रूप गोस्वामी बोलते कहाँ है, क्योंकि ये है जीव, ये जीव ये क्या आरोप बना रखी है। तो रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी का स्वयं इलाज करते हैं, उनकी बीमारी का इलाज करते हैं, स्वयं रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी को प्रसाद खिलाते हैं, उनको नहलाते नहलाते हैं, और उसके बाद रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी के सेवा से प्रसन्न होकर एक बहुत सुंदर विग्रह का निर्माण करते हैं। खुद स्वयं रूप गोस्वामी स्वयं उन्होंने विग्रह बनाया, और यह है विग्रह राजा दामोदर। तो जयपुर में राजा दामोदर का विग्रह है, वो स्वयं श्री रूप गोस्वामी ने अपने हाथों से बनाया, श्री जी गोस्वामी को दिया, और जी गोस्वामी ने फिर राजा दामोदर मंदिर में उनको स्थापित किया। तो इस तरह से ये भी शिक्षाप्रद कथा है, जी गोस्वामी से कोई अपराध नहीं हुआ, लेकिन इन कथाओं के माध्यम से हमें पता चलता है कि शिष्टाचार का पालन हमें प्रत्येक कदम में करना चाहिए, मर्यादा का पालन प्रत्येक कदम में करना चाहिए, और खासकर जो हमसे वरिष्ठ हैं उनके प्रति हमारे हृदय में हमेशा आदर की भावना होनी चाहिए, और जो हमसे जो कनिष्ठ हैं उनके प्रति दया की भावना होनी चाहिए, क्योंकि हमसे जो जूनियर हैं वो गलती करेंगे अपराध करेंगे, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें क्षमा करें। भक्ति और ठाकुर चेतन शिक्षा में लिख रहे हैं कि अपराधी को दंड देना ये सिद्धांत है, अपराध अगर कोई करता है तो अपराधी को दंड देना ये एक सिद्धांत है, एक रूल है, लेकिन फिर भक्ति और ठाकुर कहते हैं बट द हायर प्रिंसिपल इज क्या, इसे एक ऊंचा सिद्धांत है कि अपराधी को क्षमा कर दो। फिर भक्ति और ठाकुर उदाहरण देते हैं प्रहलाद महाराज का और जीसस क्राइस्ट का, बोले प्रहलाद महाराज किस तरह से अपने पिता को क्षमा कर दिया नहीं, और जीसस क्राइस्ट ने कैसे अपने फॉलोअर्स को क्षमा कर दिया। तो भक्ति ठाकुर बोलते हैं दिस इज द हाईएस्ट प्रिंसिपल टू बी कंपैशनेट टू फॉरगिव। तो इस तरह से बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, इन घटनाओं में बहुत सारी शिक्षाएं उपलब्ध हैं। तो एक बार क्योंकि श्री रूप गोस्वामी द्वादश वनों में भटकते थे, कभी भद्रवन कभी नंदेश्वर कभी गोवर्धन कभी सनातन गोस्वामी के साथ ही भजन कुटीर में रहते मानसी गंगा में, और कभी रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी या कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भजन कुटीर के निकट रहते राधाकुंड में, अलग अलग स्थानों में श्री रूप गोस्वामी भजन करते। तो रूप गोस्वामी का एक बात है, देखिए एक बात उस दिन भी बता रहे थे, ये जो गोस्वामी है वृंदावन में जिस स्थान में गए जिस स्थान में भजन कर रहे थे उसी स्थान में वापस आते उसी स्थान में भजन करते, ऐसे नहीं कि पेंडुलम की तरह घूमते रहते, क्योंकि गोस्वामियों का आचारों का भजन करने का स्थान होता था। इसलिए प्रत्येक भक्त को शिक्षा लेनी चाहिए कि गोस्वामी जो है जिस तरह से एक स्थान में रहकर भजन करते थे उसी तरह से हमारा भी एक स्थान होना चाहिए भजन करने का। सनातन गोस्वामी जब गोकुल जाते तो उसी स्थान में बिल्कुल जमीन के नीचे 20 फुट नीचे जाके सनातन गोस्वामी वहां भजन करते हैं। गोकुल में आज भी वो स्थान है, मानसी गंगा में उनका भजन कुटीर है। इसी तरह से वृंदावन में भी उनका भजन कुटीर है, द्वादश आदि किला में। इस तरह से रूप गोस्वामी का सेवा कुंज में है, रूप गोस्वामी का नंदगांव के पास 13 कदम में है। तो वहां पर भगवान की लीलाओं का स्मरण करते रूप गोस्वामी काफी समय से भजन कर रहे थे और क्योंकि बड़े हताश हो गए थे, उनको लगा कि राधारानी का दर्शन ही नहीं मुझे प्राप्त हो रहा है, मैं इतने सालों से यहां इतने वर्षों से भजन कर रहा हूं, लगता है मुझसे कोई अपराध हुआ है, लगता है कि मेरा ठीक से भजन नहीं हो पा रहा है, इस कारण से राधारानी मुझे दर्शन नहीं दे रही है, मैं क्या करूं, बहुत हताश हो गए। और पर इस तरह से वो बहुत ज्यादा कर्म कर रहे थे और एक दिन सनातन गोस्वामी के साथ भी वो चर्चा कर रहे थे, कृष्ण कथा चर्चा कर रहे थे इसी 13 कदम के पास बैठकर। सनातन गोस्वामी से घंटों घंटों कथा चलती थी। तो एक दिन क्या हुआ, सुबह के समय कथा प्रारंभ हुई, दोपहर का समय हो गया और रूप गोस्वामी भूल गए कि सनातन गोस्वामी आए हुए हैं, सुबह से आए हुए हैं मेरे पास, कृष्ण कथा तो चल रही है ठीक है लेकिन अब प्रसाद क्या खिलाऊंगा मैं, क्योंकि भारी सुदबू रहती नहीं थी, अब कुकिंग कौन करेगा, कौन बनाएगा, कौन खिलाएगा, कौन भोग लगाएगा, समय भी हो गया दोपहर का समय। तो रूप गोस्वामी चिंता करने लगे क्या करूं। तो एक वहां पे एक ग्वालिन आई, उसने कहा कि लगता है कि आप बहुत कमजोर हो गए हो, क्या मधुकरी नहीं करते आप? बाबा मधुकरी क्या करूं मैं, अब मधुकरी करके क्या करूंगा मैं, इतने वर्ष मधुकरी कर रहा हूं, क्या मुझे केवल अपने उधर की चिंता करनी चाहिए, मुझे राधारानी दर्शन ही नहीं देती है, मैं तो इतना गिरा हुआ हूं, इतना पतित हूं कि मुझे राधारानी का दर्शन नहीं प्राप्त हो रहा है, ऐसा मधुकरी करने का क्या लाभ, अच्छा है कि मैं मर जाऊं यहीं पे, जीवित यहीं पे मर जाऊं। तो इस तरह से वो गाली बोले, नहीं नहीं आपको मरने की आवश्यकता नहीं है, इससे राधारानी कभी प्रसन्न नहीं होंगी, और आपको यहाँ निवास मिला है, आपको यहाँ भजन करने का स्थान मिला है, इसी से क्या नहीं पता चलता कि राधारानी की विशेष कृपा हुई है आपके ऊपर, ये तो मैंने सुना है अपने घर से कि वास्तव में जिसके ऊपर राधारानी की कृपा होती है वही ब्रज में आकर रह सकता है। तो रूप गोस्वामी अपने आप को बहुत इस तरह से मीनहीन मान रहे थे। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, देखो मैं आपके लिए लेकर आई हूं, ये खीर है, ये चावल है, ये दूध है, बना लो खीर और बना के भोग लगा के आप उस बाबा को खिलाना। तो रूप गोस्वामी सोच रहे थे तो फिर बोले क्या हुआ, काफी कमजोर हो गया दिखता है, ठीक है ऐसा करो मैं ही तुम्हारे लिए बना देती हूँ, तुम कहाँ बनाओगे, तुम कमजोर हो गए। बोले नहीं 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 मैं कमजोर नहीं हुआ, मैं खुद बना लूंगा, नहीं नहीं आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो स्वयं वो ग्वाल क्या करती है, खीर बनाती है खूब, बोले मैंने खीर बना दिया है, अब आप ठाकुर जी को भोग लगाने मैं जा रही हूँ, घर पर मुझे डांट पड़ेगी। तो ग्वालिन वहां से चली जाती है। तो रूप गोस्वामी खीर भोग लगाते हैं और खीर भोग लगाने के बाद सनातन गोस्वामी को महाप्रसाद देते हैं खीर का। सनातन गोस्वामी जैसे मुंह में रखते हैं बोलते हैं वाह ये खीर तो इतना चिरमय है, ये खीर तो इस जगत का लगता नहीं है, किसने बनाया। तो रूप गोस्वामी पूरी कथा बता देंगे क्या क्या हुआ, कैसे वो ग्वालिन आई और कैसे उसने खीर प्रसाद महाप्रसाद बनाया। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी सोचने पड़ गए, अच्छा एक ग्वालिन आई थी चावल दूध और चीनी लेकर और उसने स्वयं ही खीर बनाया, हो ये क्या किया, जानते हो रूप वो तो स्वयं राधारानी थी, स्वयं राधारानी ग्वालिन के रूप में आई थी, आज तुमने उससे सेवा ले ली, हम क्या ब्रज में इसलिए रह रहे हैं कि राधारानी से हम सेवा लेंगे, ये तो अच्छी बात नहीं। तो रूप गोस्वामी जो है बहुत ज्यादा वो हो गए, दुखी हो गए, अरे ये क्या, मैं तो राधारानी को पहचान ही नहीं पाया, साक्षात राधारानी आई और मुझको पहचान नहीं पाया कि वो राधारानी है, मेरा वो भाग्य कि मैं आज जो है ये इनके उनका दर्शन कर पाया, लेकिन ये क्या कि आज मैंने उनसे सेवा ले ली, ये तो ठीक नहीं हुआ। तो इस तरह से रूप गोस्वामी ने इस तरह से बहुत सुंदर खीर महाप्रसाद दिया सनातन गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी। तो इस तरह से कई प्रकार की शिक्षाएं हैं जो उनकी कथा से सुनने को मिलती है। और एक कथा आती है, इसमें दो कथाएं हैं, एक कथा ये है कि रूप गोस्वामी एक बार लीला स्मरण कर रहे थे और रूप गोस्वामी जब लीला स्मरण कर रहे थे तो उस लीला स्मरण में क्या देखा, ये कथा एक हम पहले सुन चुके हैं, भक्ति रत्नाकर में दूसरे तरीके से समझाया गया। तो एक कथा में उन्होंने एक लीला स्मरण क्या की, उन्होंने क्यों देखा कि राधा रानी जो है वृक्ष से फूल चुनना चाह रहे हैं और फूल शाखा जो है बहुत ऊपर है तो वहां तक उनका हाथ पहुंचनेगा। तो कृष्ण पीछे से जाते हैं और टहनी को नीचे कर देते हैं, पीछे से ऊपर चढ़ के टहनी को नीचे कर देते हैं। तो राधा रानी उसको पकड़ लेते हैं और जैसे ही राधा रानी पकड़ती है तो क्या होता है, टहनी को छोड़ देते हैं कृष्ण, तो राधा रानी उसमें हवा में लटकने लग जाती है। तो श्री रूप गोस्वामी लीला दर्शन करते हुए हंस देते हैं। हंसने पर क्या होता है, उसी समय एक वैष्णव वहां से आते हैं और वैष्णव मिलने के लिए आए होते हैं श्री रूप गोस्वामी से। उनको लगता है कि श्री रूप गोस्वामी तो मुझे देखकर हंस रहे हैं, तो सनातन गोस्वामी को जाके कहते हैं ये तो अच्छा नहीं है, मुझे देखकर हंस रहे हैं, और बुरा मान के वहां से चले आते। तो रूप गोस्वामी का उसी समय लीला जो स्मरण है, लीला स्मृति है, वो बदल जाती। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं ये क्या हुआ, लीला स्मृति क्यों नहीं हो रही, मुझे लगता है निश्चित रूप से मुझे मैंने कोई अपराध किया है किसी वैष्णव के चरणों में। सनातन गोस्वामी के पास जाके बोलते हैं, सनातन गोस्वामी को बोलते हैं कि मुझे खबर नहीं आता है कि लीला स्मरण नहीं हो पा रहा है, लगता है कहीं अपराध हो गया है क्या। शायद सनातन गोस्वामी ने कहते हैं कि ऐसा करिए, हम वृंदावन के जितने भी वैष्णव उनको प्रसाद के लिए निमंत्रण देते हैं, और जो वैष्णव प्रसाद के लिए निमंत्रण स्वीकार नहीं करेगा तो समझ लेना कि उसी वैष्णव के चरणों में और अपराध हुआ है। तो इस तरह सभी वैष्णव को निमंत्रण देते हैं। तो एक वैष्णव बोलता है कि मैं क्यों जाऊं वहां पर, मैं तो गया था और मुझे देखकर हंस दिया उन्होंने, मैं नहीं आता प्रसाद के लिए। तो रूप गोस्वामी समझ जाते हैं, फिर रूप गोस्वामी इस वैष्णव के पास जाके उस रूप गोस्वामी इस वैष्णव से क्षमा मांगते हैं। एक कथा दूसरी है जो भक्ति रत्नाकर में दिया है, भक्ति रत्नाकर में इस तरह से दिया है, भक्ति रत्नाकर में दिया है कि रूप गोस्वामी लीला का स्मरण कर रहे हैं। क्या लीला स्मरण कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि राधारानी का श्रृंगार कर रही है सखियां, उनको वस्त्र इत्यादि पहना रही है, श्रृंगार कर रही है, और कृष्ण जो है पेड़ के पीछे से खड़े हुए देख रहे हैं चुपके से। जब उनका श्रृंगार पूरा हो जाता है तो राधारानी को दर्पण देते हैं, आईना देते हैं देखने के लिए, अपना चेहरा देखने के लिए। तो राधारानी जैसे ही अपना चेहरा देखते हैं शीशे में, तो शीशे में क्या देखते हैं, कृष्ण को देखते हैं, क्योंकि कृष्ण पीछे खड़े हुए हैं पेड़ के पीछे, वो दिखाई देते हैं शीशे में, दिखाई पड़ जाते हैं। तो ये देखकर जो है सखियां हंस लेती हैं कि राधारानी को बहुत शर्म आती है, क्योंकि राधारानी को लगता है कि छुपे छुपे कृष्ण जो है मेरा श्रृंगार देख रहे थे। तो ये देखकर रूप गोस्वामी हंस देते हैं। तो हंस देते हैं तो क्या हुआ कि फिर उसी समय वैष्णव कोई आते हैं उनसे मिलने के लिए श्री रूप गोस्वामी से। तो रूप गोस्वामी को जब देखते हैं कि वो हंस रहे हैं तो वैष्णव वहां से वो दुखी होकर चले जाते हैं, और रूप गोस्वामी की जो लीला स्फूर्ति है वो बंद हो जाती है। तो रूप गोस्वामी यही सोचते हैं वही बात कि मैंने किसी वैष्णव के प्रति अपराध किया है, मुझे उस वैष्णव से जाके माफी मांगनी चाहिए। तो ये वैष्णव सनातन गोस्वामी के पास आता है और वैष्णव बोलते हैं कि इस तरह से मैं रूप गोस्वामी से मिलने गया और मुझे देखकर हंस दिया उन्होंने। सनातन गोस्वामी को समझाते, नहीं नहीं आपको देखे नहीं हंसे थे, उनको वो लीला स्फूर्ति हुई थी, और बताते वो क्या लीला है, ऐसी लीला का दर्शन करते हुए स्मरण करते हुए उनको हंसी आ गई थी, आपको देखकर नहीं। तो बोलता अरे अरे ये तो मुझसे अपराध हो गया, मैंने गलत सोचा उनके बारे में, मैं अभी जाकर उनसे क्षमा मांगूंगा। उसी समय वहां से श्री रूप गोस्वामी आते हैं क्षमा मांगने के लिए, और यहां से वैष्णव आते हैं क्षमा मांगने के लिए, तो एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। तो इस तरह से ये इस तरह का मतलब वर्णन किया गया है अब भक्ति रत्नाकर में इस घटना का। श्री रूप गोस्वामी की एक्सेसी के बारे में बताया गया, घटना बताई गई। एक बार सेवा कुंज में कथा चल रही थी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भागवत कथा करने में बहुत दक्ष थे और कई बार गोस्वामी आकर उनसे कथा सुनते थे। तो श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से कथा सुन रहे थे श्री रूप गोस्वामी। एक बार कथा सुनते सुनते क्या हुआ, श्री रूप गोस्वामी स्तब्ध हो गए, एक्सेसी में आ गए, और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने देह का त्याग कर दिया है, क्योंकि स्टंट हो गए एकदम से, उनकी पलकें नहीं झपक रही थी और उनके रोंगटे खड़े हो गए, शरीर से पसीना पसीना हो रहा था उनका शरीर। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, भक्तों को लगा कि रूप गोस्वामी ने कहीं देह तो नहीं त्याग दिया, समाधि की अवस्था में तो नहीं गई। तो फिर एक भक्त गया और उसने रुई रखी नाक के नीचे, श्री रूप गोस्वामी के नाक के नीचे, और जैसे ही रुई को रखा श्री रूप गोस्वामी के नाक के नीचे तो रुई क्या हुई, जल पड़ी, क्योंकि उनका श्री रूप गोस्वामी का शरीर तप रहा था कृष्ण कथा सुनकर। तो ये उनके सुनने का स्टैंडर्ड था श्री रूप गोस्वामी। कई बार हम देखते हैं कि भक्त लोग कथा सुनते हैं और उनके नाक के नीचे रुई जब रखी जाती है तो वो रुई जम जाती है क्योंकि वो ठंडे पड़ जाते हैं कथा सुनते जो कहती है। 1554 में इसलिए सनातन गोस्वामी का तिरभाव हुआ और रूप गोस्वामी इस तिरभाव के बाद बहुत ज्यादा शोक मग्न हो गए और हमेशा जो है वो भजन में लगे रहे। उसके बाद फिर उन्होंने और कोई भारी कार्य नहीं करना किया हुआ, दिन रात वो भजन करते रहते थे। और लगभग 27 दिन के बाद, लगभग एक महीने के बाद श्री रूप गोस्वामी का भी तिरुभाव हो गया। और सनातन गोस्वामी का तिरुभाव हुआ था आषाढ़ पूर्णिमा के दिन और शुक्ल द्वादशी श्रावण मास यानी आज के दिन तिरुभाव हुआ श्री रूप गोस्वामी का। और चंद्रचरणामृत में लिखा है, सनातन कृपा पायो भक्ति सिद्धांत और श्री रूप कृपा पायो रस भार से प्राण, यानी सनातन गोस्वामी की कृपा से भक्ति के सिद्धांत का पता चला और रूप गोस्वामी की कृपा से रस तत्व के बारे में पता चला। रूप गोस्वामी ने कई ग्रंथों की रचना की है जिसमें कुछ प्रसिद्ध ग्रंथों की हम चर्चा करेंगे, जिसमें है पहला हंसदूत। हंसदूत जैसे हमने पहले बताया था कि रूप गोस्वामी ने वैराग लेने से पहले ही ग्रंथ की रचना की थी हंसदूत की। और ग्रंथ में बताया गया, क्या बताया गया कि ललिता जी राधा रानी के बारे में सूचना देती है कि राधा रानी क्या करती है, बहुत ज्यादा विरह महसूस कर रही है और कारण से लगभग हतरी सी पड़ी हुई है ब्रज में वृंदावन में, और ललिता जी उससे देखकर जो है सहा नहीं जा रहा है। तो एक हंस के माध्यम से ललिता जी राधा रानी के बारे में मथुरा में कृष्ण को संदेशा भिजवाती है। तो वो हंस जो है वो हंस दूत बन जाता है और राधा रानी के बारे में सब कुछ जाके बताता है। तो बहुत सुंदर इसमें श्लोकों की रचना है और उन सभी लीला स्थलियों का वर्णन है जिस रास्ते से वह हंस गुजरा था और वृंदावन से मथुरा गया था, उन सब लीला स्थलियों का भी वर्णन किया गया है। और उसके बाद दूसरा ग्रंथ लिखा श्री रूप गोस्वामी ने उद्धव संदेश। उद्धव संदेश में हंसदूत, जिस तरह से हंसदूत में ललिता जी जो है एक हंस को भेजती है, उसी तरह से कृष्ण से मथुरा से कृष्ण जो है उद्धव जी को भेजते हैं संदेशा देकर। क्या संदेशा देकर कि जाइए अब राधा रानी को बताइए कि, और उनको जाके सांत्वना दीजिए और ये भी बताइए कि उनका क्या हाल हो रहा है, कृष्ण का क्या हाल हो रहा है राधा रानी से विरह के कारण। आप जाइए वहां जाकर राधा रानी को सांत्वना दीजिए, वहां नंद महाराज माता यशोदा को सांत्वना दीजिए और वो आज सखा मिलेंगे उनका आलिंगन करिए। और जब आप राधा रानी को मिले अगर वो मूर्छित है तो आइए जो लीजिए वैजयंती माला लीजिए मेरी, इस वैजयंती माला से आप उनका स्पर्श करना और उससे जो है उनकी मूर्छा दूर होगी। तो इस तरह का कुछ वर्णन है उद्धव संदेश में। तीसरा है स्तव माला। स्तव माला जो है जी गोस्वामी ने ग्रंथ का संकलन किया था, लेकिन इसमें जो स्तव है ये सब श्री रूप गोस्वामी के द्वारा लिखे गए हैं। जब गोविंद देव जी का विग्रह प्राप्त हुआ था, गोविंद देव जी का विग्रह जब प्राप्त हुआ था तो ये वो समय था जब श्री रूप गोस्वामी ने स्तव माला ग्रंथ की रचना की थी। और उसमें एक कविता है जिसको कहते हैं चाटुष पुष्पांजलि। बहुत सुंदर इसमें कविता है जिसमें श्री रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं राधा रानी की जो बेणी है उसकी तुलना उन्होंने सर्प से की है। इस श्लोक में ये श्लोक इस प्रकार से है, नव गोरचना गौरी प्रवेंद्री वराम वराम मणि सबक विद्योति वेणी वेलंगना सनाम। ये चतुर्थ पुष्पांजलि का पहला श्लोक है। ओ क्वीन ऑफ वृंदावन श्री राधा आई वर्शिप यू, योर फेयर कॉम्प्लेक्शन मोर रेस्प्लेंडेंट देन मॉल्टन गोल्ड, द कलर ऑफ योर सारी द ह्यू ऑफ ब्यूटस फ्लावर ब्लू लोटस फ्लावर, योर ब्यूटिफुल ब्रेडेड हेयर लॉन्ग एंड रेवन ब्लैक, इट्स कॉय फॉर स्टडर्ड मेनी ब्रिलियंट जेम्स लाइक द शाइनिंग ब्लैक फूड ऑफ अ कोबरा। तो यहां पर रूप गोस्वामी ने क्या किया, जब ये रचना की श्लोक की तो राधा रानी की वेणी की तुलना उन्होंने किससे कर दी, सर्प से कर दी। सनातन गोस्वामी ने इस रचना को पढ़ा, सनातन गोस्वामी ने कहा श्री रूप गोस्वामी को कि आपने ये राधा रानी की वेणी की तुलना एक सर्प से कर दी है, ये तो ठीक नहीं लगता मुझे। तो ऐसा कहकर सनातन गोस्वामी चले गए, क्योंकि उन दिनों क्या मर्यादा का पालन हुआ करता था। ऐसा नहीं कि आप किसी को सुधार रहे हैं तो दूसरा भक्त जो है भड़क पड़ेगा कि आप मुझे ठीक कैसे कर रहे हैं, मैंने ठीक ही लिखा है। लेकिन रूप गोस्वामी बड़े विनम्र थे, उन्होंने कहा आप ठीक कह रहे हैं श्रीपाद, शायद मुझसे भी गलती हुई होगी। नहीं, उन दिनों ऐसा होता था, खैर आजकल थोड़ा भूल गए ये इसी शताब्दी में है तो, लेकिन उस समय ऐसे मर्यादा होती थी, जब किसी को करेक्ट किया जाता था तो उस करेक्शन को सुधार को बहुत ही प्रेम से और विनम्रता से स्वीकार करते थे। तो श्रील रूप गोस्वामी बोलते हैं कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव। तो सनातन गोस्वामी वहां से चले गए और जो सनातन गोस्वामी अपने भजन में लीला स्मरण करने लगे, उनको लीला स्फूर्ति हुई। उन्होंने देखा कि राधारानी झूला झूल रही है, सखिया उनको झुला रही है और राधारानी का केवल जो है पीठ दिखाई दे रहा और वेणी दिखाई दे रही। सनातन गोस्वामी दूर से बोले, लाली लाली सर सर बचो। तो सखिया हंसने लगी, राधारानी भी देखकर हंसने लगी और एकदम से वो लीला स्मूर्ति जो हो रही थी वो एकदम से ओझल हो गई। सनातन गोस्वामी सोचे पड़ गया, अरे ये हंस क्यों रही थी सखिया? अच्छा अच्छा, ओ ये तो राधारानी की वेणी थी, मैं तो सर मान बैठा। ओहो, अब मुझे समझ में आ रहा है क्यों श्रील रूप गोस्वामी ने जो है वेणी की तुलना सर से कर दी है। तो वापस आते सनातन गोस्वामी, क्षमा करना रूप, आपने ठीक ही लिखा था, मैं कल बोल गया। तो ये चाटू सूजमान जी उस समय लिखा गया था जब गोविंद देव जी का विग्रह प्राप्त हुआ था, उसी के बाद वो रचना हुई थी सब अलग। और विदर्भ माधव विदर्भ माधव ग्रंथ है जिसमें कृष्ण का यानी माधव के लीला विलास के कौशल का वर्णन है। यह है विदर्भ माधव, विदर्भ माधव। और इस नाटक में ये जो लीला जो ड्रामा लिखा है श्री रूप गोस्वामी ने, ये श्री गोपेश्वर महादेव की प्रेरणा से लिखा गया। गोपेश्वर महादेव ने आज्ञा दी थी श्री रूप गोस्वामी को कि आप ऐसे ग्रंथ की रचना करें, तो रूप गोस्वामी ने विदर्भ माधव की रचना की थी। और उसमें 7 acts हैं, एक्ट होते हैं ना, act 1 act 2, इस तरह से 7 acts हैं विदर्भ माधव में। और उसमें वृंदावन की विशेष रूप से राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ है। और उसमें राधारानी जो है पहली बार जो कृष्ण की वंशी ध्वनि को सुनती हैं, वेणु वादन को सुनती हैं, तो वो गदगद हो जाती हैं और उनका विशेष प्रेम हो जाता है कृष्ण से। और राधारानी जो है प्रेम पत्र लिखती हैं कृष्ण को, लेकिन कृष्ण जो है ऐसे ही दिखावे में और जानबूझकर उस पत्र का पात्र को तिरस्कार कर देते हैं। तो राधारानी जो है बहुत ज़्यादा हताश हो जाती हैं, बहुत दुखी हो जाती हैं कि ऐसा कृष्ण ने क्यों किया, और वो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाती है। तो फिर पूर्णमासी ललिता जी विशाखा जी जो है उनको समझाने का प्रयास करते हैं और फिर ये प्रयास करते हैं कि कैसे राधा कृष्ण का मिलन जल्द से जल्द कराया जाए। तो इस तरह से कई तरह के मूड्स, कई तरह के इमोशंस का डिस्क्रिप्शन है इस ग्रंथ में। राधारानी के उनकी भावनाओं का वर्णन है और कैसे बताया गया धीरे धीरे कैसे राधारानी का मिलन होता है कृष्ण से। तो विदर्भ माधव वो ग्रंथ है जिसमें राधा कृष्ण के मिलन का वर्णन है। और ललित माधव कौन सा ग्रंथ है? ललित का मतलब है कि वह नायक जो विदग्ध नवयुवक और केली विषय में सनिपुण और निश्चिंत है। तो ऐसे ग्रंथ को कहा गया ललित, वह ललित माधव। ललित माधव में भी गोपेश्वर महादेव के आज्ञा से, उनकी प्रेरणा से, सपने में जब आए थे गोपेश्वर महादेव ने प्रेरणा दी थी श्री रूप गोस्वामी को इस ग्रंथ की रचना करने के लिए। और इसमें केवल वृंदावन की लीला का वर्णन नहीं बल्कि मथुरा द्वारका की लीला का भी वर्णन हुआ है। द्वारका में कैसे कृष्ण ब्रज की लीलाओं का स्मरण कर रहे थे, गोपियों का स्मरण कर रहे थे, विशेष रूप से इस ग्रंथ में बताया गया है। तो द्वारका के भक्त जो है इस ग्रंथ को जब पढ़ेंगे तो ये सीख पाएंगे कि द्वारका में रहते हुए ब्रज का स्मरण कैसे करना चाहिए। ये ललित माधव में बताया गया। तो ललित माधव में विपरीत भाव, फीलिंग एंड सेपरेशन, विरह भाव के बारे में, राधा कृष्ण के विरह भाव के बारे में अधिक से अधिक चर्चा की गई। और एक ग्रंथ है दान केली कौमुदी। इसलिए लिखा ग्रंथ, इसका कारण था। रूप गोस्वामी ने ग्रंथ क्यों लिखा? रघुनाथ दास गोस्वामी ने जब ललित माधव पढ़ा तो वो देर जागने वाले थे, क्योंकि उसमें राधा कृष्ण के सेपरेशन के बारे में लिखा, तो उससे वो उनको भी सेपरेशन होने लगा। तो जब सेपरेशन होने लगा तो फिर वो शरीर छोड़ने वाले थे, कुछ खाना पीना सब छोड़ दिया उन्होंने। तो रूप गोस्वामी चिंतित हो गए, अरे ये क्या, मेरे ग्रंथ का अध्ययन करने से तो रघुनाथ दास गोस्वामी शरीर छोड़ने वाले हैं, ये तो मुझे तो अपराध लगेगा कि मेरे कारण ऐसा हुआ। तो रूप गोस्वामी सोचने लगे कि क्या करूं मैं अब। और रूप गोस्वामी ने तुरंत एक ग्रंथ की रचना कर दी, दान केली कौमुदी, जिसमें राधा कृष्ण की हास्यप्रद लीला का वर्णन हुआ। और इस हास्यप्रद लीला का अध्ययन करके रघुनाथ दास गोस्वामी पे वो भी हंसने लगे और बहुत जल्द वो भी हुष्ट-पुष्ट हो गए। तो जैसे कि श्रील प्रभुपाद जब बहुत बीमार होते थे तो प्रभुपाद कहते थे मुझे डॉक्टर के पास मत ले जाओ, हॉस्पिटल मत ले जाओ, आप सब मंदिरों में कीर्तन करो, कीर्तन ही मेरी दवाई है। इस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी की दवाई क्या है, लीला का स्मरण है, कृष्ण की लीला का स्मरण है। तो दास के लिए कौमुदी में ये लीला आती है कि राधा रानी अपने संगियों के साथ यानी गोपियों के साथ घी लेकर जा रही है, फ्रेश गाय का घी, देसी गाय का घी लेकर जा रहे हैं गोविंद कुंड। फिर गोविंद कुंड में वहां पर वसुदेव भी आए हैं बहुत बड़ा यज्ञ करने के लिए। लेकिन होता क्या है, जब वहां दान घाटी से गुजर रही है राधा रानी गोपियों के साथ, तो कृष्ण हमेशा वहां पर रास्ता रोक देते हैं सखाओं के साथ और ये कह के कि हमें दान दीजिए, पहले दान देंगे तब आपको छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे आप। तो बोलते ये तो बड़ी समस्या है। तो फिर वहां पे तर्क वितर्क चलता रहता है और राधा रानी की तरफ से ललिता जी और विशाखा जी तर्क करते हैं और कृष्ण की तरफ से मधुमंगल और सुबल सखा तर्क करते हैं। तो आप मतलब बहुत देर तक तर्क चलता है लेकिन पूर्णवासी आकर जो है इस तर्क वितर्क को जो है उसको सेटल करते हैं और बोलते हैं ठीक है हम देंगे शुल्क। जानते हैं क्या शुल्क है, हम राधा रानी हमारे शुल्क है, हम राधा रानी को देते हैं आपको, यही हमारी शुल्क है। तो कृष्ण बड़े खुश हो जाते हैं, बोले ये ठीक है। तो इस लीला को पढ़कर रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत हंस दिए और रघुनाथ दास गोस्वामी फिर से स्वस्थ हो गए। भक्ति रसाम सिंधु ग्रंथ, तो एक ग्रंथ की रचना की थी श्रीगुरु गोस्वामी ने जिसमें भक्ति के अलग अलग स्तर बताए उन्होंने और भक्ति के अलग अलग सीढ़ियां बताएं, कितने प्रकार की भक्ति है ये भी बताया। और इस ग्रंथ में उन्होंने बताया मुख्य रस क्या है, गौण रस क्या है और सातवें मुख्य रस का वर्णन करते हुए सातवें विभाव क्या है, अनुभव क्या है, सात्विक भाव क्या है, व्यभिचारी भाव क्या है, फिर गौण रस का वर्णन किया, सात प्रकार के गौण रस है यानी कि लगभग 12 रस है, 12 वनों में 12 रस पाए जाते हैं ऐसा भी वर्णन मिलता है, ब्रजमंडल की 12 वनों में 12 रस पाए जाते हैं। तो इस तरह से इसमें भक्ति रसाम सूत्रों में 2129 श्लोक हैं। श्री रूप गोस्वामी ने 2129 श्लोकों का संकलन किया है इस ग्रंथ में। एक बार अपने बड़ा सुंदर के बारे में मैंने सुना था भक्ति रसामृत सिंधु, ये भक्ति रसामृत का सिंधु है, सागर है। इसके बाद फिर श्री विश्वनाथ जी ठाकुर जिनको रूप गोस्वामी का भी अवतार बताया जाता है, उन्होंने लगभग सारे रूप गोस्वामी की जितने भी ग्रंथ हैं उनके ऊपर टीका दी। तो उन्होंने ग्रंथ लिखा भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, उन्होंने कहा भक्ति रसामृत, ये तो भक्ति रसामृत का सिंधु है, सागर है, इसका एक बिंदु भी मिल जाए तो बहुत। तो उन्होंने क्या किया, ग्रंथ की रचना की जिसमें भक्ति रसामृत सिंधु के 27 महत्वपूर्ण श्लोक लिए और ग्रंथ का नाम रखा भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु शिला विश्वनाथ जी के ठाकुर के द्वारा। और इसके बाद क्योंकि देखिए भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में उन्होंने सामान्य भक्तों के हिसाब से लिखा था, 5 रसों का वर्णन सामान्य रूप में किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मधुर रस का वर्णन विस्तार से इसमें करूंगा तो जो नौसिखिए हैं जो इतने परिपक्व नहीं है वो इसको इतनी ठीक तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो श्री अरूप गोस्वामी ने एक पीएससी थीसिस लिखा मधुर रस के ऊपर और ग्रंथ का नाम रखा उज्ज्वल नीलमणि। उज्ज्वल नीलमणि जो है इतना हिस्टोरिक लिटरेचर है जो कोई अगर पढ़ना भी चाहे तो नहीं समझ पाएगा क्योंकि बिना मार्गदर्शन के बिना गाइडेंस के इतना हाईली टेक्निकल है। उसमें जो उन्होंने रूप गोस्वामी जिस तरह से यूज किए डिटेल यूज किए रस के बारे में, इट इज बियॉन्ड कंसेप्शन। तो एक बार भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के समय में एक कॉलेज में एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को उज्ज्वल नीलमणि पढ़ा रहा था, तो एक शिष्य ने आगे बताया अपने गुरु को यानी भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर को बताया, उन्होंने कहा कि ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है उज्ज्वल नीलमणि। तो कुछ समय के बाद 5-6 महीने के बाद उसी शिष्य ने आगे बताया कि गुरुदेव उस टीचर ने अपने एक स्टूडेंट से शादी कर ली है जिसको वो उज्ज्वल नीलमणि पढ़ाता था। तो उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ जो वास्तव में नवसिखिए भक्तों के लिए नहीं है, बाकी बाकी उन लोगों के लिए जो कम से कम मध्यम स्तर में है भक्ति। तो इस तरह से उज्ज्वल नीलमणि लिखा श्री रूप गोस्वामी ने और एक ग्रंथ लिखा लघु भागवतामृत। कहते हैं कि सनातन गोस्वामी ने जो बृहद भागवतामृत लिखा उसी का ये एवरेज एडिशन है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो लघु भागवतामृत एक अलग सही ग्रंथ है जिसके 2 सेक्शन है, कृष्णामृत और भक्तामृत। कृष्णामृत में श्री रूप गोस्वामी एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है और उनके अंश अवतारों और विस्तारों का वर्णन कर रहे हैं श्री रूप गोस्वामी। और कृष्ण के ये बता रहे हैं कि कृष्ण की लीलाएं जो है वो शाश्वत है, नित्य है और मथुरा मंडल में ब्रजमंडल में अभी भी ये लीलाएं चल रही हैं। भक्तावृत में विशेष रूप से भक्तों का वर्णन किया श्री रूप गोस्वामी ने जिसमें वो वर्णन कर रहे हैं मार्कंडेय ऋषि का, प्रहलाद महाराज का, पांडवों का, यादवों का, उद्धव जी का, ब्रज की गोपियों का और अंततः श्रीमती राधा रानी का। तो ये लघु भागवतामृत में है। फिर उन्होंने ग्रंथ की रचना की उपदेशामृत, वाचो बेगम मनस क्रोध बेगम जीवा बेगम, इस ग्रंथ की 11 श्लोक इसमें ग्रंथ में है, इस ग्रंथ की रचना की। इसके अलावा जीव गोस्वामी लघु वैष्णव तलस्तोषी में कई अन्य ग्रंथों का वर्णन कर रहे हैं, अष्टादश लीला छंद, उत्कलिकावली, गोविंद विरुद्धावली, प्रेम प्रेमोन्द सागर, मथुरा महात्म्य, नाटक चंद्रिका, पद्यावली, कृष्ण जन्म तिथि विधि, बृहद गणेश दीपिका, लघु गणेश दीपिका, ये भक्ति रत्नाकर बताया गया। और प्रयुक्ताख्यात चंद्रिका। और इसके अलावा भक्ति रत्नाकर में ये बताया गया है महर्षि चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा कि चिद्रूप गोस्वामी ने 11 श्लोकों की एक रचना की थी, स्मर मंगल स्त्रोत्र। और ये जो स्त्रोत्र है 11 श्लोकों के, ये उन्होंने दिया था कृष्णदास कविदास गोस्वामी को विस्तार करने के लिए। और कृष्णदास कविदास गोस्वामी ने लिखा है गोविंद लीलावृत में, श्री रूप दर्शिला दिशा लिखित अष्टक कोल्या श्री राधिका कृत केली ततिर्मय यमा, यानी कि ये जो 11 श्लोक होती है उसी का ही विस्तार से वर्णन किया है श्री कृष्णदास कविदास गोस्वामी ने गोविंद लीलावृत। तो इस प्रकार ये वर्णन मिलता है। और एक ग्रंथ और लिखा निकुंज रहस्य स्तव, जिसमें राधा कृष्ण की जो निकुंज की लीला है उसका विशेष रूप से वर्णन हुआ। फिर है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सहस्त्रनाम, उज्ज्वल चंद्रिका, श्री गंगा अष्टक और साधना पद्धति, प्रेमानस्तव, राधा राधाष्टक, श्री नवदीप अष्टक, उपासना पद्धति, वैष्णव पूजा विधानम, पंच श्लोकी, गदाधर अष्टक, एकांत निकुंज विलास, अद्वैत स्वराज, जुगल स्वराज, अनंत मंदिर स्तव, श्री सनातन गोस्वामी अष्टकम, अष्टकाल स्मरणी, साधनावर्त और शिक्षा दर्शन, हरे कृष्ण महामंत्र निरूपण। और उसके अलावा रूप गोस्वामी ने ये सारे ग्रंथों की रचना की, लेकिन उनका मूल उद्देश्य था कि भक्ति के बारे में विस्तार से वर्णन करना, भक्ति के बारे में जितना अधिक वो जानकारी देना चाहते थे ग्रंथों में उपलब्ध है। तो जैसे कि हमने देखा कि रूप गोस्वामी रूप मंजरी है और कई तरह के सखियां बताई गई हैं। एक वर्णन मिलता है राधा कृष्ण गणदेव दीपिका में, जो कि स्वयं श्री रूप गोस्वामी ने लिखा है। क्योंकि देखिए सखियों के बारे में तो कई पुराणों में भी वर्णन है, पद्म पुराण, गर्भ संहिता, सखियों के बारे में वर्णन है, लेकिन मंजरियों के बारे में वर्णन बहुत कम दिखाई पड़ता है। और विशेष रूप से श्री रूप गोस्वामी ने मंजरियों के बारे में जितना विस्तार से वर्णन दिया है और किसी संप्रदाय में किसी आचार्य ने नहीं दिया और ना ही किसी पुराण में पाया जाता है। जैसे राधा कृष्ण गणदेव दीपिका में श्री रूप गोस्वामी 5 प्रकार की सखियों का वर्णन कर रहे हैं। पहला वो बताते हैं सखी, फिर बताते हैं नित्य सखी, कैटेगरी है सखियों की, सखी, नित्य सखी और प्राण सखी, प्रिय सखी, परम प्रेष्ठ सखी। इसमें जो प्राण सखी है वो रूप मंजरी और रति मंजरी, रूप मंजरी और रति मंजरी कौन है, वो प्राण सखी है। यानी मंजरियां भी सखी है लेकिन उम्र में वो बहुत कम होती है, यानी कि अधिक सभी उम्र उनकी उम्र 13.5 वर्ष तक होती है। जैसे रूप मंजरी की उम्र है 13.5 वर्ष, ये उनका इंटरनल एज है, 13 years 6 months। तो ये इस प्रकार वर्णन मिलता है। तो मंजरियां जो कौन है मंजरियां, देखिए अगर आप देखेंगे चंडीदास और जयदेव गोस्वामी, निबारकाचार्य, विद्यापति, इन सब ने कई गीत लिखे, कई उन्होंने ग्रंथ लिखे, इन्होंने जो है कई तरह से सखियों का वर्णन किया है, लेकिन मंजरियों के बारे में विशेष रूप से श्री रूप गोस्वामी से ही ये वर्णन प्राप्त होता है, विशेष रूप से उज्जवल गीतमणि में। तो मंजरी हमने जैसे बताया सखी है लेकिन ये उम्र में छोटी होती हैं और हमेशा राधा रानी की सेवा में रत रहती। हमने बताया था ना, क्या बताया था, क्या बताया था, कामानुगा कामातिनुगा 2 डिविजन से बताया था हमने आपको, और संभोग इच्छा में, संभोग इच्छा में जो है वो सखियां आती हैं जिनको कई बार अंग संग प्राप्त होता है श्री कृष्ण का, लेकिन जो मंजरियां हैं वो कभी भी कृष्ण का व्यक्तिगत संग नहीं करना चाहती हैं, वो केवल राधा रानी का ही संग करना चाहती हैं। और सखियां भी जो है 2 प्रकार की बताई गई हैं, 2 प्रकार की सखियां हैं, एक है सम स्नेहा और एक है असम स्नेहा। सम स्नेह का मतलब सम प्रकार से स्नेह होता है, राधा रानी के लिए और कृष्ण के लिए सम यानी इक्वल स्नेह होता है राधा रानी और कृष्ण के लिए। असम स्नेह का मतलब यह है कि असम स्नेह का मतलब होता है दो प्रकार के असम स्नेह होते हैं, कृष्ण स्नेहादि का और राधा स्नेहादि का। कृष्ण स्नेहादि का वो सखियां होती है जिनका विशेष प्रेम कृष्ण से होता है, धनिष्ठा जैसे सखी है उनका विशेष प्रेम आकर्षण कृष्ण से ही होता है केवल, राधा रानी से नहीं होता उतना। तो लेकिन राधा स्नेहादि का है यानी कि वो सखियां आती है या वो मंत्री आती है जिनका विशेष प्रेम विशेष सेवा राधा रानी के लिए ही होता है सिर्फ, उनको कहते हैं राधा स्नेहादिका, जिसमें रूप मंजरी आती है अनंग मंजरी आती है। और इन मंजरियों की क्या खूबी है, अगर ये व्यक्तिगत संग नहीं प्राप्त करना चाहते हैं कृष्ण के संग में नहीं आना चाहते हैं विशेष रूप से, तो इनमें क्या फिर विशेषता है। विशेषता ये है कि राधा रानी में जो भी भाव प्रकट होता है वो सारा भाव तत्काल ही मंजरियों में प्रकट हो जाता है। अगर राधा रानी रोती भी दिखाई रोती है, अगर राधा रानी विरह महसूस कर रही है तो तत्काल ही मंजरियां भी रोएंगी और विरह महसूस करेंगी। राधा रानी अगर हंसती है तो मंजरियां भी हंसने लगती हैं, यानी कि जो भी राधा रानी को कृष्ण के संग में जो भी भाव की अनुभूति होती है, भले अंग संग में हो या दूर रहते हुए हो, जो भी भाव प्रकट होता है राधा रानी में वो सारा भाव मंजरियों में तत्काल ही दिखाई पड़ता है। और निकुंज की लीला में सखियां नहीं प्रवेश कर सकती हैं, उनको अनुमति नहीं है, केवल मंजरियां ही प्रवेश कर सकती हैं। और क्या सेवा रहती है, सेवा जैसे कि उनका श्रृंगार करना और फूलों की शैया बनाना और उनको पंखा करना और उनको पान इत्यादि देना, यानी कि ये सब सेवा रहती है मंजरियों की। मंजरियां देख पाती हैं निकुंज में जाकर राधा कृष्ण की गुह्यतम लीलाओं, मतलब इतना मंजरियों के ऊपर विशेष कृपा होती है। और मंजरियां अगर बहुत दूर भी है निकुंज में भी नहीं है और राधा रानी कहीं और है, राधा रानी बरसाना में है और कोई मंजरी समझ लीजिए सेवा कुंज में गई है, तो अगर राधा रानी का जो भी भाव होगा वहां बरसाना में वो सारा भाव प्रकट हो जाएगा मंजरियों का सेवा कुंज में तत्काल ही। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है मंजरियों की। और देखा जाए चैतन्य महापुरुष जो आए जिनके बारे में लिखा है अनर्पित शरीर चिराग करुणया अवतीर्ण कलौ उन्नत समर्पित उन्नत उज्ज्वला उज्ज्वल स्वभक्ति श्रीयम, यानी कि चैतन्य महापुरुष उन्नत उज्ज्वल रथ का वितरण करने आए हैं। तो ये वास्तव में चैतन्य महापुरुष यही देने आए, कलियों के पतित से पतित जीवों को ये भाव देने आए जो मंजरियों का भाव, कितनी ऊंची बात बताइए। तो ये विशेष गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में ही ये मंजरी का भाव उपलब्ध है, यहाँ तक कि निबार्क संप्रदाय में भी जो है वहां पर स्वकीय भाव को ज्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में परिक्रिया भाव को बहुत ही महत्व दिया जाता है। और जितनी भी मंजरियां ये सब विवाहित होती हैं और यहाँ तक कि सखियां भी विवाहित होती हैं, और लेकिन इनके विशेष सेवा राधा रानी के लिए होती हैं और उनका केवल राधा रानी से ही लेना देना होता है, कृष्ण से कोई लेना देना नहीं, ये केवल राधा रानी से ही उनकी सेवा करना चाहते हैं। वो बात अलग है कि कभी कभी कृष्ण जो है मंजरियों को भी अपना व्यक्तिगत संग देते हैं और राधा रानी को देखने की आवश्यकता नहीं होती, मंजरियों को देखकर ही समझ आते हैं कि राधा रानी का भाव अभी क्या है। अगर मान ली कोई मंजरी मान प्रकट कर रही है तो समझ आते हैं कि कृष्ण राधा रानी मान प्रकट कर रही है अपने कुंज में, और दिखाई पड़ रहा है कि मंजरियां रो रही है तो समझ जाते हैं कृष्ण की राधा रानी भी रो रही है वहां। तो मंजरियों का ये विशेष स्थान है और उसमें भी श्री रूप मंजरी जो है उनका प्रमुख स्थान है, विशेष स्थान है, यानी रूप मंजरी सभी मंजरियों की क्या है, लीडर है, और राधा रानी की सबसे प्रिय है श्री रूप मंजरी। तो इस तरह से ये यहां बताया गया है राधा रानी का जो प्रेम है वो सर्वोच्च प्रेम है, क्योंकि राधा रानी को प्रेम कल्प लता बताया गया है ब्रज में। और जैसे कि समझ लीजिए तुलसी का पौधा आपने देखा है, तुलसी के जो पौधा है उसके जो तने हैं उसकी तुलना राधा कृष्ण से की गई है, और उसके जो पत्ते हैं दल है उसकी तुलना गोपियों से की गई, और उसकी जो मंजरियां हैं उसकी तुलना मंजरियों से की गई। जब हवा चलती है बहुत तेज हवा चलती है तो सबसे पहले तुलसी के पौधे में नीचे क्या गिरता है, मंजरियां गिरती हैं। कहने का मतलब यह है कि सबसे ज्यादा इसलिए आनंद किसको प्राप्त होता है, मंजरियों को प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये मंजरियों का विशेष स्थान है और विशेष रूप से श्री रूप मंजरी का स्थान है, और यही वास्तव में मंजरियों का भाव देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे। उनका जो मुख्य कारण था आने का ये था कि वो स्वयं इस भाव का आस्वादन करें और साथ में इस भाव का वितरण भी करें कलयुग के हम जैसे पति जीवात्माओं के लिए। हरे कृष्ण। तो ये सारे काफी सारी बातें थी समझने की, और उन बातों को बहुत ही गंभीरता से समझना है। श्री रूप गोस्वामी का जीवन चरित्र जो है बड़ा आदर्श है, क्योंकि जितना लोग गंभीरता से इनके जीवन चरित्र को पढ़ेंगे होता गया है। श्रील प्रभुपाद ने कहा एक स्थान में, एक जगह प्रभुपाद ने कहा था कि जब हम भक्ति रसायन सिंधु ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो वास्तव में हम श्री रूप गोस्वामी पाद जी का व्यक्तिगत संग करते हैं। रूपानुभव होने का मतलब क्या है ये भी बात समझिए। रूपानुभव का अर्थ क्या है? रूपानुभव जो कई बार बोलते हैं रूपानुभव है, देखिए रूपानुभव का अर्थ यह होता है, सबसे पहला जो सरल अर्थ यह है, रूप गोस्वामी की शिक्षाओं के उसको शिक्षाओं का पालन करना, यानी कि रूप गोस्वामी की शिक्षा यानी रूप गोस्वामी के अनुगत होकर, उनकी परंपरा के अनुगत होकर उनकी शिक्षाओं में जब पालन करते हैं तो ऐसे भक्त को रूपानुभव कहा गया। लेकिन रूपानुभव का एक अर्थ और है, जैसे स्वरूप दामोदर रामानंद राय, ये तो रूपानुभव नहीं है, ये रागात्मिका भक्त है, ये नित्य परिकर है भगवान के, और बौद्ध लीला में रागानुगा भक्त के रूप में आ रहे हैं, समझ रहे हैं? तो ब्रज में जितने परिकर हैं, जैसे माता यशोदा है, नंद महाराज है, ललिता जी है, विशाखा जी है, सुबल सखा है, श्रीराम सखा है, ये सब रागात्मिका भक्त है, ये रूपानुगा नहीं है, क्योंकि ये रूप गोस्वामी के अनुगत नहीं है। जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये सब रूपानुगा है, ये रूप मंजरी के अनुगत है, ये रूप मंजरी के अनुगत है। तो ये रागात्मिका भी है और रूपानुगा भी है, लेकिन स्वरूप दामोदर रामानंद राय ये रागात्मिका है या रागानुगा है लेकिन रूपानुगा नहीं है। इसी तरह से नंद महाराज, माता यशोदा, ये रागात्मिका है, नित्य परिकर है, लेकिन ये रूपानुगा नहीं है। तो रूपानुगा का भी अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। रूपानुगा का मतलब क्या होता है, कि रूप गोस्वामी के अनुगत होने का क्या मतलब होता है? तो ये हमने जो है संक्षेप में वर्णन किया रूप गोस्वामी के बारे में। और कुछ आप पूछना चाहें तो कहना चाहें तो कह सकते हैं। हाँ जी, हाँ, सत्य बाबा राधारणी है और रुक्मिणी जी चंद्रावली। रूप गोस्वामी ने वर्णन किया ललित माधव, ललित माधव में वर्णन आता है कि विंध्या पर्वत को बड़ा द्वेष हो गया था हिमालय से, कि हिमालय की पुत्री के रूप में पार्वती जी प्रकट हुई है, बहुत अधिक सुंदर है, काश मेरी भी ऐसी बेटी हो, सुंदर हो। तो विंध्या को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी, द्वेष हो रहा था। तो विंध्या ने सोचा कि कैसे मैं ये कन्या प्राप्त करूं, तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, घोर तपस्या की, और ब्रह्मा जी जो है वो प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी ने कहा अरे मैंने वरदान दे दिया, अब क्या होगा, पार्वती से सुंदर अधिक सुंदर कौन है, और पार्वती से अधिक तो सुंदर राधा रानी ही केवल, और वो तो वृषभानु महाराज की पुत्री है, वो यहां कहां से जन्म लेंगे, और वो तो कृष्ण की संगी है, और इनका कहना है कि इनकी ऐसी बेटी हो जिसका पति महादेव को भी परास्त कर रही हो तुम्हें, और महादेव को कौन परास्त करेगा। अरे ये मैंने क्या वरदान दे दिया, तो बहुत चिंतित हो गए। तो ब्रह्मा जी ने राधारानी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। तो ब्रह्मा जी ने घोर तपस्या की, राधारानी प्रकट हो गए। राधारानी का चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा, और मैं विंध्या पर्वत के घर में प्रकट हो जाऊंगी उनके पुत्र के रूप। तो ब्रह्मा जी बोले कि समझ में नहीं आया कि कैसे होगा ये। तो फिर क्या हुआ, विंध्या पर्वत ने यज्ञ किया था बहुत सारा, बहुत तपस्याएं की थी। तो उस समय क्या हुआ, ब्रज में महाराज चंद्रभानु और वृषभानु के यहां पर चंद्रावली और राधारानी का जन्म हुआ था। तो योग माया ने क्या किया, उनको वहां से उठाया और स्थानांतरित कर दिया विंध्या पर्वत की पत्नी के घर में, ठीक है। और कुछ समय के बाद फिर उनका जन्म हुआ। तो उस समय क्या हुआ कि कंस पुत्रा को भेजा हुआ था उसने कि जाओ ब्रज में जितने भी छोटे छोटे शिशु हैं, बच्चे हैं जिन्होंने जन्म लिया 10 दिन पहले, सबको उठा लो। तो वो घूमती घूमती यहां पर ही पहुंच गए विंध्या पर्वत के पास, और वहां पे उन दो बच्चों को देखा, और यज्ञशाला यज्ञ चल रहा था, वो वहीं से जो है बच्चों को उठा लिया, उस बच्चों को उठा के चल पड़ी। और बच्चों को जब उठा के चल पड़ी तो विंध्या को बहुत क्रोध आया, तो उसने फिर ब्राह्मणों को बुलाकर फिर से यज्ञ करवाया, और मंत्र उच्चारण के द्वारा जो है उसको आकाश से नीचे लिया, कमजोर कर दिया बहुत पुत्रा को। तो एक बच्ची जाके गिरी कहां पर, विदर्भ में, और वहां महाराज भीष्म जब आए थे नदी के तट पर तो वहां पर उनको एक कन्या प्राप्त हुई और वो थी चंद्रावली। चंद्रावली ने अपना विस्तार किया रुक्मिणी जी के रूप, और बाद में योग माया ने फिर से चंद्रावली को ब्रज में महाराज चंद्रभानु के घर में स्थानांतरित कर दिया। और उसके बाद फिर जो है राधा रानी भी वापस इसी तरह से वापस आ गई, योग माया ने फिर राधा रानी को भी स्थानांतरित किया था। तो राधा रानी क्या हुआ, एक दिन जो है वो बहुत विरह में थी कृष्ण से, और वो यमुना जी में कूदने वाले थे, यमुना में कूद भी गए हो, और विशाखा जी ने देखा वो भी कूद गई। विशाखा जी को तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि साक्षात यमुना जी तो विशाखा की विशाखा सखी की लिक्विड फॉर्म है, तो इसलिए विशाखा जी को तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन राधा रानी को जो है वो सूर्यदेव ने वहां से उठा लिया, क्योंकि यमुना जी कौन है, सूर्य की बहन है, नहीं नहीं बेटी है, बहन है नहीं, उनकी बेटी है, यमराज की बहन है ना। तो इस तरह से फिर सूर्यदेव लेके चले गए राधा रानी को अपने लोक में। उन्होंने कहा आप क्यों चिंता करते हो, देखो यहाँ साक्षात सूर्य नारायण के दर्शन हो रहे हैं, इतने सुंदर है। बोलते हाँ ये सुंदर जरूर है लेकिन कृष्ण जितने सुंदर नहीं है। तो राजा छत्रा जी उस समय द्वारका में प्रार्थना कर रहे थे कि उनका भी कोई पुत्र हो और उनकी भी कोई पुत्री हो, तो सूर्यदेव से प्रार्थना कर रहे थे। तो सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया और राधा रानी का फिर विस्तार हुआ, और वही राधा रानी राजा छत्रजी जी यहाँ पे सत्यभामा के रूप में। तो इस तरह से बहुत सारी कथाएं हैं। जब राधा रानी चली गई, विशाखा जी चली गई, तो ललिता जी को भी बड़ा दुख हुआ और गिरिराज जी के ऊपर चढ़ गई हो, और गिरिराज जी के ऊपर से छलांग मारा हुआ, तो जामवान ने उनको पकड़ लिया। और कृष्ण जानते 28 दिन उन्होंने युद्ध किया था जामवान के साथ, और उन्होंने अपनी बेटी का विवाह करवाया कृष्ण से, यानी कि वही ललिता जी जामवती बने, वही ललिता जी जामवती बने। तो इस तरह से कि कंस को जो दुर्गा जी ने ये भी कहा था योग माया ने कंस के कारागार में कि वो मारने वाला तुम्हें तो प्रकट हो चुका है, साथ में 8 महाशक्तियां भी प्रकट हो चुकी हैं, उनसे ही बच के रहना, तो वो 8 गोपियां। तो इस तरह से जो ब्रज की गोपियां हैं, किस तरह से द्वारका में जाकर 16108 पटरानियां बनी, इसका भी वर्णन दे रहे हैं श्री गुरु गोस्वामी लोग माधव राधा रानी का प्राकट्य और सब कुछ। ठीक है, हरे कृष्ण। कैसे क्षमा मांगे, ऐसे में क्या है कि हरिनाम जो है हरिनाम से वैष्णवापराध तो नहीं क्षमा होता है, लेकिन हरिनाम इतना जरूर कर देता है। भक्तों का जब संग करते हैं और हरिनाम लेते रहते हैं तो कहीं ना कहीं हरिनाम में बुद्धि देगा कि जाओ उस वैष्णव से माफी मांगो। तो किसी भी गैस में हरिनाम लेना बंद नहीं करना चाहिए, साधु संग कभी हमें बंद नहीं करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन, ऐसे वैष्णव आचार्यों की जीवनी पढ़ना, वैष्णव का गुणगान करना, ऐसे में वैष्णव का गुणगान खूब करना चाहिए, और खासकर उस वैष्णव का गुणगान करना चाहिए जिसके चरणों में अपराध हुआ है। तो जब वैष्णव का गुणगान करेंगे खूब तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारा हृदय पकड़ेगा और धीरे धीरे हम समझ पाएंगे कि आज मैं इतना गुणगान कर रहा हूँ लेकिन मैंने कल तो इनके चरणों में अपराध किया था। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारा हृदय पकड़ेगा और हम खुद पश्चाताप करेंगे और जाके क्षमा मांगेंगे। ठीक है, हाँ जी, हाँ वही वही वही, हाँ वो उनका लंबा जीवन है जामवान का, वो एक कल तक जी सकते हैं। कई ऐसे जो है महापुरुष हैं जो इनका जीवन एक कल से ज्यादा है, जैसे अश्वत्थामा भी आपने। पहले पहले के चंडीदास विद्यापति ये सब पहले के हुए हैं, जयदेव गोस्वामी, चंडीदास विद्यापति ये सब उस समय के हैं। नहीं हमारे पास तो नहीं, हरे कृष्ण। नहीं दर्शन तो कर पाते हैं, ऐसा नहीं होता, दर्शन तो हम कर पाते हैं लेकिन उनका निजी जो संघ व्यक्तिगत संघ की इच्छा नहीं करते हो, वो तो राधारानी की सेवा में ही बड़ा आनंद ले रहे हैं, उसमें सब कुछ उनको मिल जाता है कि नहीं। श्री रूप गोस्वामी बात की, श्री रूप गोस्वामी तिरुभाव की महामोत्सव की, श्री गौरीदास मंदिर तिरुभाव की महामोत्सव की, श्री प्रभुपाद की जय,
गुरु जी की जय।